कल हमने चर्चा किया था कि आत्मा, जीव, प्रकृति और काल, तो अभी हम कर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्म क्या होता है। तो यहां पर परिभाषा दी गई है कर्म की, काल के प्रभाव में और प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण में जीव जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। तो प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, रस्सियों के समान हमें बांध के रखते हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। सत्वगुण में अलग प्रभाव होता है, रजोगुण में अलग प्रभाव होता है, तमोगुण में अलग प्रभाव होता है, और उन गुणों के प्रभाव में और काल के प्रभाव में जब हम कार्य करते हैं, तो भौतिक जगत में जब जीव आता है तो उसके ऊपर दो चीजों का प्रभाव होता है, गुणों का और काल का। तो इसके अंदर में रहकर जब जीव कुछ कार्य करता है तो उसको कहते हैं कर्म। तो ये कर्म क्या है? ये कर्म मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, लिखने का, सुनने का, बोलने का, हर चीज का हिसाब किताब रखा जाता है। यहां तक बोलते हैं यदि हम एक पलक भी झपक रहे हैं तो उसका भी हिसाब किताब है। तो ये सब कर्म में आता है और कर्म के नियम होते हैं। जैसे कि एक नियम है, हर क्रिया के लिए समान और विरोधी प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए हमने कुछ किया तो उसका फिर रिएक्शन आता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है हमारे ऊपर। लेकिन कर्मों के नियम को समझना बहुत ही जटिल है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं गहना कर्मणोगति। गहना कर्मणोगति मतलब बहुत गहन है, बहुत जटिल है कर्मों के नियम को समझना, इतना आसान नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति वकालत पढ़ता है तो भारत के जो नियम है, वकील है, उसको बनने में 5-6 साल लगते हैं और उसमें भी वो पूरा नहीं बन पाता है। तो फिर पूरे ब्रह्मांड के जो नियम है, उसके जो कानून है, उनको समझना इतना आसान नहीं है, कठिन है, वो जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए ये मानव जीवन की जिम्मेदारी है कि हम उसको समझें। यदि हम उसको नहीं समझेंगे, नियमों को, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो नियम मालूम नहीं है, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं अज्ञान हूं, मुझे मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। बच्चा यदि बोलेगा मुझे मालूम नहीं है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो अग्नि उसको छोड़ेगी? अग्नि उसको नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार से यदि हम कुछ पाप कार्य करेंगे और हमें मालूम नहीं है तो उसका प्रतिक्रिया अवश्य आएगी, उससे हम नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए ये जो नियम है इनको जानना बहुत आवश्यक है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए हमें अपने द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम के विषय में ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या खाने से क्या परिणाम होता है, झूठ बोलने से क्या परिणाम होता है, परस्त्री गमन करने से क्या परिणाम होता है, जुआ खेलने से क्या परिणाम होता है। तो उनका जानना बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से ये जो नियम है ये मानव जीवन के लिए लागू होते हैं कर्म के नियम। पशु योनि में कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि पशु योनि में उतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। पशु योनि जो है भोग योनि है और मानव योनि है कर्म योनि। तो मानव योनि में जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार यदि हमारे बुरे कर्म हुए तो फिर से हमें पशु योनि या पक्षी योनि स्वीकार करना पड़ता है। और उसमें जो व्यक्ति को ज्यादा, वो जो पशु है या पक्षी है, उसको सोचने समझने की क्षमता तो होती है लेकिन उतनी अधिक नहीं होती है। उसको जिस स्थिति में डाला गया है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है। सुअर को विष्ठा खाने की इच्छा है तो उसको यदि हम हलवा खिलाने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं खाएगा वो। तो हर जीव जो है, जैसे गाय है, गाय को आप मांस खाने का प्रयास भी करोगे तो नहीं खाती हो। तो उनकी वो भोग योनि है उसमें जो है ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उनके पास ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन मानव जीवन में क्या होता है, बहुत स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता जब होती है तो ज्यादा अपेक्षा भी की जाती है। जैसे कल हमने आपने को उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था किसी को याद है? उदाहरण दिया था जज का और क्लर्क का, कि जो जज है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है इसलिए उसको ज्यादा स्वतंत्रता है। वो थोड़े समय के लिए आता है, उसकी तनख्वाह वेतन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो क्लर्क है उसकी जिम्मेदारी कम है। तो क्योंकि हमें अभी सुविधाएं ज्यादा मिली हैं, स्वतंत्रता ज्यादा मिली है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए मानव जीवन को एक जंक्शन, जंक्शन मतलब जैसे आपने देखा होगा पुणे जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां से दो रास्ते निकलते हैं, जैसे यहां पर ट्रेन दिख रही है आपको, तो दो जगह ट्रेन जाती है यहां से, एक इस दिशा में एक दिशा में। जैसे दादर में, दादर से आप कहां जा सकते हैं, वीटी भी जा सकते हैं और चर्च गेट भी जा सकते हैं, विरार भी जा सकते हैं और कल्याण भी जा सकते हैं। तो उसी तरह मानव जीवन जो है वो जंक्शन है। हम पशु योनि में भी जा सकते हैं नीचे की योनि में, और ऊपर की जो योनियां हैं गंधर्व कन्नर्व गंधर्व किन्नर जो स्वर्ग लोक हैं, ये आध्यात्मिक जगत तक भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मानव जीवन में जो हम करते हैं, जो चुनाव करते हैं, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हर क्षण में जो हमारा कार्य हो रहा है उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। लेकिन पशु योनि में जो पहले कर्म हो गए हैं ऑलरेडी, उनका ही भोग है, और वो भोग कर करके फिर व्यक्ति ऊपर उठता है और फिर से उसको मानव जीवन प्राप्त होता है बहुत जन्मों के बाद। लेकिन अभी हम ध्यानपूर्वक यदि अपने समय को नहीं बिताएंगे, अपने विचारों को यदि हम सुधारेंगे नहीं, तो फिर से हमें नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। तो कर्मों के नियमों का प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उसमें पहला बोला जाता है अच्छे कर्म, पुण्य कृति, पुण्य कर्म बोला जाता है, पायस एक्टिविटीज। तो पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म है यज्ञ दान तप, है ना, लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, ये पुण्य कर्म में आता है। और दूसरा होता है विकर्म, विकर्म मतलब बुरे कर्म, पाप कृत्य। पाप कृत्यों में क्या आता है? चार मुख्य पाप हैं, कौन कौन से? मांसाहार करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना और नशा पान करना। तो ये चार मुख्य पाप हैं, और ये चार पापमय कार्यों के स्तंभ हैं, और अधर्म जो है वो इन चार चीजों पे खड़ा है। और ये चार चीजें जो हैं धर्म के चार जो खंभे हैं उनको वो तोड़ती हैं। जो मांसाहार है उससे क्या कौन सा खंभा टूटता है धर्म का? कृपा। कृपा नहीं रहती समाज में, क्योंकि इतने क्रूर हो जाता है व्यक्ति कि अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए वो प्राणी को बहुत ज्यादा दर्द देने के लिए तैयार रहता है। एक कसाई था और एक दुकान पे वो एक मुर्गी को काट रहा था, और उसका बेटा उसको देख कर रोने लगा। तो बोलता, रो क्यों रहा है, इसमें रोने की क्या बात है, हंस। तो जो क्रूर लोग होते हैं, कसाई लोग होते हैं, उनको मारने में बहुत आनंद आता है। लेकिन मासूम बच्चा जिसको अभी उसका हृदय इतना भी कठोर नहीं बना है, वो सहन नहीं कर सकता। एक बार पाश्चात्य देशों में कुछ बच्चे जो बचपन से ही मीट खिलाने की जिनको आदत डाली गई माँ के गर्भ से ही, मीट मतलब पैक होके आता है डिब्बे में, उसको पका के खिला देते हैं। लेकिन बाद में उन बच्चों को पूछा गया, पता है आपको कहाँ से आता है, कैसे बनता है मालूम है? बोला, दुकान से आता है, पैकेट में आता है। बोले, नहीं चलो आपको दिखाते हैं कहाँ से आता है। तो उनको कसाई घर में ले जाया गया, तो बच्चे देख के इतना डर गए, उन्होंने बोला ये हमें नहीं खाना ये। तो ये जो है ये बहुत क्रूरता है। इसलिए समाज में जो कृपा है वो दूर होती जा रही है। मांस जो है हिंसा का उत्पाद है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ वायलेंस। तो जब हम किसी जीव पर हिंसा करके हम उसे खाते हैं, तो हम भी उसी के समान खूंखार बन जाते हैं और किसी पर हम कृपा नहीं दिखा सकते। हालांकि वनस्पतियों को काटने में भी हिंसा है, लेकिन उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत कम दर्द होता है। पेड़ पौधों में जो चेतना का विकास होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन पशु में और मानव में चेतना का विकास बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आत्मा वही है लेकिन विकास उतना नहीं है। तो विकास क्योंकि कम होता है इसलिए उसमें उनको दर्द की भावना भी कम होती है। लेकिन जब व्यक्ति क्रूरता से किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है जिसमें चेतना का विकास बहुत ज्यादा है तो उसको क्या होता है, वो बहुत क्रूर बन जाता है। उसको दूसरों के दुख में कुछ लगता नहीं, हंसी आती है बल्कि उसे मजा आता है दूसरों को दुख देने में। तो फिर ऐसे समाज में हम कैसे शांति स्थापित कर सकते हैं? इसलिए समाज में शांति खत्म होती जा रही है। लोगों को दूसरों को दुख देने में, दूसरों का परेशान करने में, दूसरों को मारने में कुछ लगता ही नहीं, सीधा तलवार निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। नशापान एक दूसरा स्तंभ है अधर्म का, और जो किसको तोड़ता है, तपस्या को। क्यों, कोई बता सकता है क्यों? नशे से दिमाग में परिणाम होता है, तपस्या से कैसे संबंध है इसका? हाँ जी, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, विचार शक्ति कम हो जाती है। और कोई बताएगा? लेकिन तपस्या से कैसे संबंध है वो पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा नशा पान से क्या होता है। मानव जीवन जो है वो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए बनाया गया है। और जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो भौतिक जगत में आने के बाद उसकी भोग करने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उसको नशा चढ़ जाता है। किस चीज का? भोग करने का, इंद्र तृप्ति का। उसको जहां भी कोई वस्तु दिखती है भोग करने की, उसको क्या लगता है, ये मेरी है, मुझे चाहिए। स्त्री दिखती है तो लगता है इसके साथ मैं भोग करूं, कुछ खाने का दिखता है तो मेरे लिए है। कोई भी चीज जो उसको दिखती है वो उसे पाना चाहता है अपने लिए, है ना। तो इसलिए उसको बोला जाता है तप करो, तपस्या करो, इंद्रियों को ना बोलना सीखो। आंखें चाह रही हैं कुछ चीज को देखना तो आंखों को बोलो नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिह्वा बोल रही है किसी चीज को जो खाने योग्य नहीं है वस्तु, उसको बोलो नहीं ये नहीं खाना है, भगवान को भोग नहीं लगाया गया। तो ऑलरेडी जीव के ऊपर इतना नशा है और यदि उसको क्या करेंगे, हम नशा पान कराएंगे और ऊपर से, तो उसका तप होगा क्या कुछ है? तो तपस्या की जो थोड़ी बहुत भावना है वो भी खत्म हो जाती है। तो नशा पान से क्या होता है, भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। जब व्यक्ति नशा पान करता है, शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद तुरंत इच्छा क्या होती है उसकी, है भोग करने की। शराब पीने के बाद तुरंत उसको स्त्री चाहिए भोग करने के लिए, वाइन एंड वुमेन। पार्टी में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टी में पोस्टर लगाते हैं, जैसे गोवा यदि आप जाते हैं कई बार, तो वहां पे वो बिल बोर्ड लगा के रखते हैं, तो व्यक्ति दारू पी रहा है और साथ में अनेक स्त्रियां उसके साथ भोग कर रही हैं। तो इसलिए नशा पान से क्या है, भोग वासना और बढ़ जाती है, इसलिए वो तपस्या के विरुद्ध है, इसलिए नशा पान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नशा पान करेगा वो तपस्या नहीं कर सकता है, और तपस्या नहीं करेंगे तो हम इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में करेंगे, भगवान को कैसे, अपने अपने मन को भगवान में कैसे लगाएंगे। तीसरा है जुआ। तो जुआ करने से क्या होता है, धर्म का कौन सा खंभा टूट जाता है जुआ से? सत्य। क्यों? क्योंकि जुए में झूठ बोलना पड़ता है, चीटिंग करना पड़ता है, तो सत्यता कम होती जाती है समाज में। और पर स्त्री पुरुष या गमन करने से क्या होता है, स्वच्छता, मन की स्वच्छता, अंदर रूप से बाहरी रूप से सब समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, उसके अंदर कुछ अच्छी बातें नहीं रहती, सारे गंदे चीजें जो शुरू होती हैं इसी से शुरू होती हैं। अजामिल की कथा यदि आपने पढ़ी होगी छठे स्कंद में भागवतम की या सुनी होगी, तो अजामिल इतना सज्जन ब्राह्मण था, बहुत उसकी अच्छे संस्कार थे। हम में से तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम उस स्तर पे हैं, क्योंकि वो बचपन से इतने अच्छे संस्कार दिए गए थे उसे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पर स्त्री के चक्कर में फंस गया तो सारी बुरी आदतें आ गईं। जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, चीटिंग करने लगा, धोखेबाजी करने लगा, और वैश्या के प्रति इतना आसक्त हो गया कि बुढ़ापे में भी उसका छोटा बच्चा था, मतलब इतना भोग कर रहा था वो। तो इसलिए ये, और समाज में जो आधुनिक समाज है सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया जा रहा है कि बस किसी के साथ भी संग करो, किसी के साथ भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब रावण सीता देवी का अपहरण करने आया तो सीता देवी ऐसे ऐसे उसको देख नहीं दिए, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, हाउ कैन यू टच मी, आप मुझे कैसे छू सकते हो। और रावण बोला था इसमें कौन सी बात है, इसमें क्या है, क्योंकि आसुरी सभ्यता का अर्थ है मतलब दूसरी स्त्री को छूना, दूसरी स्त्री के साथ संग करना, और वैदिक संस्कृति मतलब आप छू कैसे सकते हैं, देख भी कैसे सकते हैं। तो आजकल जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, आसुरी, क्योंकि उसमें एक साधारण चीज हो गई है किसी भी स्त्री के साथ संग करना और किसी भी पुरुष के साथ संग करना, साधारण बात है, जैसे घूमने जा रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, एक साधारण बात है। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है समाज में, फिर बाकी की चीजें भी और बढ़ती जा रही है। तो ये पाप कृत्य हैं और इनसे बचना बहुत आवश्यक है, यदि हम इनसे नहीं बचेंगे तो क्या होगा, क्या होगा समाज में है? अत्याचार बढ़ेगा और क्या होगा, हाँ जी, पतन हो जाएगा समाज का और क्या होगा। भगवद गीता में, हाँ बोलिए, हाँ वो ही बताना चाह रहा था मैं। भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि जब स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं तो समाज पूरा विध्वंस हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ नियंत्रण नहीं रहता। तो जो समाज के कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करनी होती है, उनमें एक होते हैं सन्यासी, दूसरे होते हैं स्त्रियां। तो सन्यासियों को भी सुरक्षा देना बहुत आवश्यक है, सुरक्षा मतलब उनको संभाल के रखना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि उनको कहीं भी भेज दो कुछ भी करो तो वो प्रदूषित हो जाएंगे, और वो प्रदूषित हो गए तो फिर समाज को मार्गदर्शन कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए जो सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको बाहर के समाज से ज्यादा संपर्क नहीं करने दिया जाता, इसलिए उनको धन कमाने की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, धन कमाने की जिम्मेदारी गृहस्थों की होती है, और वो धन कमा के उसका कुछ अंश देते हैं जिससे कि सन्यासी ब्रह्मचारी वो अपना अध्ययन करके समाज को मार्गदर्शन दे सके। यदि वो ज्यादा भौतिक चीजों के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, प्रदूषित हो जाएंगे। उसी तरह स्त्रियां मासूम होती हैं, उनको कोई भी बहका सकता है आसानी से, बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, नहीं ऐसा है, वो बातों में आ जाती हैं क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, और उनकी भावनाओं को बहलाना बहुत आसान है, खासकर एक चतुर पुरुष के लिए। तो जितना ज्यादा यदि स्त्रियां भौतिक जगत के संपर्क में आएंगी, जैसे आजकल हो रहा है, उतनी ज्यादा वो क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। और एक बार स्त्री प्रदूषित हो गई तो फिर समाज की कोई आशा नहीं रहती, क्योंकि स्त्री का बहुत बड़ा एक रोल है समाज में, स्त्री है जो बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, और जो संस्कार माँ बच्चे को देती है वो कोई नहीं दे सकता, और वो ही बच्चा बन जाता है, जो बच्चा बनता है चाहे वो लड़का है लड़की है वो आता है माँ से, तो माँ जैसी है वैसा ही बच्चा बनता है। तो इसलिए समाज में यदि सुधार लाना है तो सन्यासियों को भी सुरक्षा देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भी सुरक्षा देना पड़ेगा, और स्त्रियों को सुरक्षा देना पड़ेगा, वृद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि वृद्ध लोग ही हैं जो सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं अपने अनुभव के अनुसार। बच्चों को सुरक्षा देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को, और गायों को, क्योंकि गाय के दूध से मस्तिष्क के जो तंतु होते हैं वो सुधर जाते हैं, आध्यात्मिक चीज के लिए उनका मन हमारा लगने लगता है। तो अभी कोई बोलेगा कि चार चीजें जो आप बोल रहे हैं, मांसाहार, जुआ खेलना, नशापान करना और व्यभिचार करना, इसमें हम कई बार देखते हैं कि दूसरे कुछ धर्म जो हैं उसमें कुछ छूट दी गई है। ऐसा क्यों? जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि वेदों में वर्णन दिया गया है कि आप पशु को मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं उसकी, और हत्या करके उसे आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, सैक्रिफाइस। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि जब व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, आदि होता है, एडिक्ट होता है किसी चीज का, और उसको आप बोले कि भाई कल से छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ सकता। तो उसको धीरे धीरे छोड़ने के लिए कुछ विधान बताया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोक टोक। जैसे कि वो बोलते हैं केवल बकरी को मारना है, वो भी अमावस्या की रात को, रोज नहीं, और गांव के बाहर जाके खुद काटना पड़ेगा, और काटते समय उसकी आंखों में देखना पड़ेगा, और उसके बाद मंत्र बोलना पड़ेगा कि इस जन्म में मुझे आपको मारने का अधिकार है, अगले जन्म में आपको मुझे मारने का अधिकार है। तो इस तरह से ये सब करने से क्या होता है, व्यक्ति को बुद्धि आती है थोड़े समय में। पहली बात तो रोक टोक हो रही है, अमावस्या के केवल एक ही बार, महीने में एक ही बार, और उसके बाद भी बाहर जाके उसकी, और जब आप पशु को मार रहे हैं और उसकी आंख में देख रहे हैं तो कैसा लगेगा? किसी व्यक्ति को मार रहे हैं आप और उसकी आंख में देख रहे हैं, तो आंख में क्या दिखाई देगा? भय, करुणा, ऐसे दिखाई देगा। तो व्यक्ति को थोड़ा तो कुछ अकल आएगा ना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री बना दी हैं जहां पर लाइन से खड़ा कर दिया जाता है बकरी को, गाय को, और ऊपर से एक होलसेल में एक बड़ा वो आता है और कट देता है सबको, और फिर दूसरी मशीनें होती हैं जो पूरा त्वचा उसकी निकालती है, फिर सब मतलब मशीनाइज्ड होता है, मशीन से काम होता है। तो वो नहीं बताया गया है। तो इसका ये जो बताने का कारण है कि क्यों कुछ लोगों के लिए बोला गया है, वो इसलिए कि कुछ लोग बहुत आसक्त हैं। जैसे कि सरकार जो है शराब की दुकान का लाइसेंस देती है, तो शराब की दुकान का लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जा रहा है यदि देखा जाए कि शराब के वो बढ़ाया जाए, वो इसलिए दिया जाता है कि लोग वैसे भी पीने ही वाले हैं। जैसे कि एक जगह, एक राज्य में सरकार ने शराब बिल्कुल बंद कर दी, तो वहां पर लोग गांव में नकली शराब बना के पीने लगे, तो उससे क्या हुआ, वो जहरीली शराब बनने लगी और लोग बहुत सारे मरने लगे। तो उससे बोला गया अच्छा ठीक है, हम आपको नियमित रूप से शराब देंगे, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ऐसा करके उन्होंने उसको रोक टोक करते हैं। तो रोक टोक करने का अर्थ यह है कि जिससे क्या हो, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट, हमारा जो आसक्ति हो वो धीरे धीरे कम हो। इसका अर्थ यह नहीं कि उसको और बढ़ाया जाए। देखो उनको तो आपने पीने दिया, उनको तो खाने दिया, हमें भी खाने दो। यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी वो अच्छे नियमों का पालन कर रहा है तो उसको वो सब पालन करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? तो कई बार जब हम बोल रहे हैं कि मानव जीवन जो है उसमें तो विशेष रूप से हमें पालन करना है, तो जैसे हमने बताया था मानव जीवन में 400,000 प्रकार की चेतना है, तो विशेष रूप से जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं उनकी चेतना ऊंची समझी जाती है, क्योंकि बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो इसलिए मानव जीवन जो कि जंक्शन है जहां से हमें सही दिशा में जाना है, तो फिर से हमें गलत कार्य नहीं करना है। तो इसलिए जो भी कर्म करना है वो सोच समझ के करना है, नहीं तो वो पाप कार्य हो जाएगा। तो इसलिए पाप कार्य ना करके क्या करना है, हमें कर्म के नियमों को समझना है। तो कर्म के नियमों का प्रारंभिक ज्ञान ऐसा है कि कुछ कर्म जो होते हैं उसका इमीडिएट हमें फल मिलता है तुरंत, और कुछ का बाद में मिलता है। कोई ऐसा कर्म आप सोच सकते हैं जिसका तुरंत फल मिलता है आपको? हाँ जी, ओके, व्यापारी कुछ बेचता है उसको इमीडिएटली उसका लक्ष्मी मिलता है, और कोई खाने से भूख मिटती है, और कुछ गलत खा लिया तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है ना। किसी को झापड़ मारा आपने तो तुरंत आपको भी एक मिल जाता है ना, तो ये तुरंत उसका रिएक्शन आपको मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे कर्म होते हैं उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया काफी समय बाद आती है, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे मेरे जीवन में तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है, मैं सबके साथ भला करता हूँ, अच्छा करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि पहले जन्मों में हमने बहुत कुछ किया है, और इतना कुछ किया है कि कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ स्मरण नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव है भूलना। तो भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देंगे। आपने किसी से पैसे लिए उधार 10 साल पहले और आप भूल गए, वो तो नहीं भूला ना, बैंक से लोन लिया और आप भूल गए, आप भूल गए तो आपके भूलने से क्या होता है, बैंक वाला तो नहीं भूलेगा, वो भेजेगा पुलिस को, गुंडों को, अपना काम करा के लेगा वो। तो ये कर्मों का नियम ऐसा है कि जैसे आपके पास एक बड़ा टैंक है अनाज भरने का, गेहूं भरने का, चावल भरने का, और ऊपर से आप डाल रहे हैं और नीचे से आप निकाल रहे हैं। तो पहले आपने डाला बहुत बुरा वाला अनाज, खेती जो फसल हुई वो अच्छी नहीं हुई, अनाज का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है। तो नीचे से कौन सा निकल रहा है, अभी खराब निकल रहा है। तो अभी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगली फसल आ गई और अगली फसल जो है वो बहुत अच्छी आई, वो आपने ऊपर से डाला। तो बोले अरे ऊपर से तो इतनी अच्छी फसल डाल रहा हूं मैं और नीचे से अभी भी क्या निकल रहा है। तो इसलिए लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ये जन्म में तो मैंने कुछ की नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों का हमें कुछ याद नहीं है। तो भौतिक जगत के नियम जो हैं वो बड़े जटिल हैं, उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं निकल सकता है। फिर भी सरकार के नियम से कई बार हम बच जाएंगे, चोर कई बार सरकार से बच जाता है लेकिन भगवान से नहीं बच सकता। कोई व्यक्ति बोलता है मैंने 35 मर्डर किए हैं, तो 35 मर्डर के लिए 350 या 700 साल का जेल होना चाहिए। तो कई बार उनको जेल उम्र कैद दी जाती है, बोलो इनको 700 साल की जेल, 700 साल की जेल कैसे करोगे, उसकी उम्र कितनी है। हाँ, तो एक मर्डर करो, एक खून करो तो भी 20 साल, और 35 खून करो तो भी 20 साल, तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना। लेकिन सरकार के नियम से बच जाओगे, लेकिन भगवान के नियम से नहीं बचोगे, वहां पे आपको 35 बार मर्डर का आपको मुकरना पड़ेगा। तो इसलिए जो कर्मों के नियम हैं उनको जटिल बताया गया, गहना कर्मणोगति, वो इतने जटिल हैं कि समझ में नहीं आते कई बार। कर्मों की तुलना की गई है गाय से, क्यों, क्योंकि यदि हजारों बछड़े हैं और एक गाय को छोड़ दिया जाए वहां पर, तो हजारों बछड़ों के बीच में से भी गाय अपना बछड़ा ढूंढ के निकाल लेगी। उसी तरह से जो कर्म आपने किया है वो कर्म आपको ढूंढ लेगा। आप कहीं भी चले जाओ, वेश बदल लो, कपड़े बदल लो, बोले अरे मैं तो अभी साधु बन गया, पहले चोर था, पहले थे तो क्या, चलो जेल में अभी बंगलोर में जो अभी आप चोरी करके आए उसका सब हिसाब किताब वापस करना, नहीं साधु हूं पिछले 10 साल से साधु हूं, नहीं उसके पहले आप चोर थे, उसका हिसाब किताब भरना पड़ेगा। जैसे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्र मारे गए, तो उनसे पूछा कि भाई क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, तो उन्होंने बताया कि आप पहले राजा थे और आपने एक जंगल में जाके एक चिड़िया के ऐसे 100 बच्चों को मार दिया, तो फिर आपके भी 100 पुत्र जन्म हुए और उनका वध हुआ। तो ऐसे अलग अलग जगह बहुत सारी घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, जो जिससे हम समझ सकते हैं कि जैसे इंस्टेंट कर्मा होता है और डिलेट कर्मा होता है, मतलब तत्कालिक और विलंबित। तत्कालिक मतलब जैसे बीज बोया तो अभी ये पौधा उगा है, लेकिन बाद में ये पौधा बन के क्या हो जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे बीज हैं अभी हमारे अंदर, वो उग रहे हैं धीरे धीरे, और उग के वो बड़े हो जाएंगे और उस पर फल आएंगे, और वो फल कभी खट्टे होंगे और कभी मीठे होंगे। तो जब मीठे फल आते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन खट्टे आते हैं तो, मीठे फल आते हैं तो भगवान को जाके कंप्लेन नहीं करता कोई, भगवान बहुत मीठे फल दे दिए, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हो, हाँ कुछ बुरा भी करो ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन जब बुरे फल आते हैं तो जाके बोलते हैं अरे सब भगवान बुरे बुरे कर रहे हो, कुछ अच्छा भी करो। लेकिन दोनों ही है, दोनों ही आ रहा है, भगवान उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ना अच्छा दे रहा है ना बुरा दे रहा है। कोई बोले जज को आप तो बड़े क्रूर हो, जज को जाके बोले तो आप तो बड़े क्रूर हो, आप मुझे सब इतना बड़ा दंड दे रहे हो, तो जज बोलेगा मैं कुछ नहीं दे रहा, ये आपने जो किया है उसके किए के अनुसार आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये जो कर्म है, दूसरा इसका नियम है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कर्म। एक होता है व्यक्तिगत कर्म, व्यक्तिगत मतलब आपने कुछ कर्म किया उसका फल आपको मिल गया। दूसरा होता है एक समाज, यदि एक समाज में सब लोग पाप कार्य कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा परिवार या समाज पर आपदा आती है, और विशेष रूप से समाज का जो मुखिया होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि वो कोई बुरा कार्य करेगा तो उससे जो उसके जो आश्रित लोग हैं उनको भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो समाज का मुखिया है, जैसे राजा है या परिवार का जो पति है या जो भी है, जो मेन व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो बहुत अच्छे से व्यवहार करें, और यदि वो अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा किया जाता है कि जिनके सबके बहुत सारे कर्म बुरे हैं उनको एक साथ लाके रख दिया जाता है एक ही परिवार में, या एक ही, कई बार होता है एक प्लेन क्रैश हो जाता है तो कोई बोलेगा अरे सारे के सारे मर गए ऐसा कैसा, सबके सबका कर्म बुरा था क्या उसमें? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम योजना बनाते हैं कि हम जाएंगे प्लेन से या ट्रेन से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और फिर वही प्लेन क्रैश हो जाता है या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जितने लोगों ने कैंसिल किया मतलब उनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सब भगवान की योजना है। भगवान प्रकृति जो है वो बहुत चतुर है, प्रकृति जो है कम से कम काम में काम करती है अपना, बहुत बुद्धिमान है वो। तो जितने लोगों को मरना है वो सबको साथ में ला के रख देते हैं, और फिर क्या होता है वो सब मर जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा था, जब बहुत पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो युद्ध कराती है प्रकृति, तो युद्ध कराती है तो दोनों असुर एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। आपको उदाहरण दिया था जैसे कि शिक्षक होता है वो दो बच्चों को क्या करता है, वो बोलता कान पकड़ो आप, वो उसके कान पकड़ो और आप और खींचो इनको, तो दोनों को दर्द होता है। तो इसलिए ये सामूहिक कर्म और व्यक्तिगत कर्म दोनों होते हैं। जैसे कि किसी शहर में भूकंप आ जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन हजारों लोग के बीच में भी कई बार हम देखते हैं कि बड़ी बिल्डिंग के नीचे से छोटे छोटे बच्चे जिंदे निकल आते हैं, उनकी मृत्यु नहीं है निश्चित। तो कोई भी चीज ऐसे बाय चांस नहीं हो रही है, इधर सब पर नियंत्रण है, सब कर्म के नियम के अनुसार हो रहा है, हालांकि हम उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और कर्म बहुत जटिल है। दूसरा यहां पर बताया जा रहा है कि पुण्य तथा पाप कर्म को एक दूसरे से नहीं काटा जा सकता। मतलब क्या है इसका? हाँ जी, हाँ, तो पाप जो किया है उसका दुख भोगना पड़ेगा और पुण्य जो किया है उसको भोग करना पड़ेगा। तो पाप करो या पुण्य करो दोनों के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे वेट स्टूल और ड्राई स्टूल, गीली विष्ठा या सूखी विष्ठा, विष्ठा तो विष्ठा ही है, तो दोनों बंधन का कारण है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो भी जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा जन्म? अच्छे कर्म करके उसका भोग करने के लिए, और बुरे कर्म करेंगे तो पाप होगा तो उसका दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? करें तो करें क्या? क्या तरीका है फिर? हुँ? क्या करें, कुछ ना करें, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं? भगवान की भक्ति अकर्म। हमको जो कार्य करने हैं वो किसके लिए करने हैं? भगवान के लिए, जिसने सब कुछ बनाया है, जो भोक्ता है। नियम का ज्ञान होने से पर भी हम प्रतिक्रिया से बच नहीं सकते हैं, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, है ना, कि यदि आपको नहीं भी पता होगा तो भी आपको कहां डाल दिया जाएगा? कारागार में डाल दिया जाएगा। तो यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है? तो ये उसके बारे में है कि कई बार लोग बोलते हैं कि यदि जो भाग्य में लिखा है वो तो होने ही वाला है, भगवान की विधि को कौन हटा सकता है, कौन मिटा सकता है? तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। बोलते हैं सब कुछ तो देखा जाएगा, जो हाथ में वैसा होगा, और बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलता है। भाग्य मतलब जो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार जो हमारे जीवन में होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसका भी फल हमें प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हर जीव की स्वतंत्र इच्छा होती है, फ्री विल। स्वतंत्र इच्छा मतलब अभी मैं क्या करूं और क्या, तो पहले जो कर्म किए हैं उसका तो फल आने ही वाला है, लेकिन अभी के कर्म के द्वारा आप परिवर्तन ला सकते हैं, भविष्य सुधार सकते हैं। तो इसलिए यह कहना कि भाग्य ही सब कुछ है, ये ठीक नहीं है। भाग्य है सब कुछ, पूर्व कर्म है, लेकिन वर्तमान का कर्म भी कुछ है ना। यदि वर्तमान के कर्म का कुछ कीमत नहीं है तो फिर शास्त्रों का क्या महत्व है? शास्त्रों का कुछ महत्व नहीं रह जाता, फिर तो हम मशीन बन जाते हैं एक, यदि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो। हमारे हाथ में है, तो इसलिए शास्त्र पढ़कर ये समझना कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारा आगे का जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। हम भगवान के नियम को नहीं तोड़ सकते, अपितु भगवान के नियमों के खिलाफ जाकर हम अपने आप को ही तोड़ते हैं। क्या समझते हैं आप इससे? कोई बोलता है मैं भगवान के नियम को तोड़ दूंगा, तोड़ सकते हैं क्या भगवान के नियम को? भगवान के नियम को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? हम अपने आप को ही तोड़ेंगे। अभी भगवान का नियम है कि आपको दारू नहीं पीना चाहिए, तो कोई ये नियम को तोड़ता है तो क्या करता है वो अपने आप को? वो खुद को तोड़ रहा है, क्योंकि बाद में दारू पीने से क्या होने वाला है? शरीर पूरा नष्ट होने वाला है, अलग अलग तरह की बीमारियां आने वाली हैं। मांसाहार नहीं करना चाहिए मानव को, उसकी वजह से कितने सारे बीमारियां आ रही हैं। और बाद में जो नरक में जाना पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन यही जीवन में, यही शरीर में भी बहुत समस्या आने वाली है। व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष के साथ संग करने से अलग अलग बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है। तो प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे, भगवान के नियम को तोड़ेंगे, प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो प्रकृति के और भगवान के नियम को तोड़कर हम अपने आप को ही तोड़ रहे हैं, उसमें हम किसी का बुराई नहीं, हम अपनी बुराई कर रहे हैं। यदि कोई बोलेगा मैं सरकार के नियम को तोड़ रहा हूं तो वो अपना ही बुराई कर रहा है, क्योंकि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाने वाला है और फिर उसको और ज्यादा दंड मिलने वाला है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सरकार के नियमों के साथ चलते हुए, भगवान के नियमों के साथ चलते हुए ना अच्छा करना है और ना बुरा करना है। हमें भगवान के लिए कार्य करना है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जिनका ही सब कुछ है, और यदि उनके लिए हम कार्य करेंगे तो फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे जो सैनिक होता है, सैनिक जब युद्ध करने जाता है युद्ध के मैदान में तो क्या होता है, बहुत गोलियां चलाता है, बहुत लोगों को मारता है, लेकिन लोगों को मारने के बाद जब वो वापस आता है तो उसको मेडल मिलता है, मिलता है ना मेडल, मारने से मेडल मिल रहा है। तो वो सोचने लगा यदि मैं मारने से मेडल मिल रहा है, और फिर बाद में वो झगड़ा कर लेता है अपने पड़ोसी के साथ और उसको भी मार देता है गोली से, तो सोचेगा अभी एक मेडल और मिलना चाहिए मुझे। तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? अभी जेल मिलेगा। तो वो बोलेगा अरे पहले मारा तो मेडल दिया, अभी मारा तो जेल, क्या अंतर है दोनों में? है? क्या बाहर वालों को मारोगे तो वो नियम में कैसे आ गया? पड़ोसी को मारने में युद्ध करते समय वो सरकार की ओर से युद्ध कर रहा था, सरकार ने बोला था जाओ मारो, लेकिन वही सरकार बोल रही कि आपको अपने पड़ोसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, आप अपने पड़ोसी को नहीं मार सकते। तो इससे हम समझते हैं कि जो भगवान का नियम है, भगवान की ओर से यदि हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए भगवान की ओर से कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों तीर चला रहे थे, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों इतने सारे योद्धाओं की हत्या कर रहे थे, है ना? लेकिन एक व्यक्ति कर्मबंधन से मुक्त हो रहा था युद्ध करने से, और दूसरा व्यक्ति कर्मबंधन में फंस रहा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के लिए कार्य कर रहे थे और दुर्योधन स्वयं के लिए कार्य कर रहे थे। तो ये रहस्य है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करता है वो कर्मबंधन में फंस जाता है, और जब हम भगवान के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हम कर्मबंधन से मुक्त होते हैं। तो इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है। भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्मबंधना, कि यदि हे अर्जुन आप जो ये कुछ भी कार्य करो ये मेरे लिए करो वो यज्ञ माना जाएगा, और यदि मेरे लिए नहीं करोगे कार्य तो वो कार्य क्या हो जाएगा? बंधन का कारण, आपको इस भौतिक जगत में और बांध देगा। तो इसलिए जो भक्त भगवान का होता है वो जो खाता है सोता है कुछ भी कार्य करता है, यहां तक कि जो यदि वो स्नान भी करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं अपने शरीर को धोकर सजाकर भगवान के सामने प्रस्तुत करूंगा इससे भगवान को आनंद मिले, मैं ये भोग बना के भगवान को खिलाऊंगा इससे भगवान को आनंद मिले, क्योंकि वो मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं, और सेवक का एक ही कर्तव्य होता है कि वो जो भी करता है वो स्वामी की प्रसन्नता के लिए करता है, उसका अपना उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता है। तो कर्म में बुराई नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, कर्म में ही सब प्रॉब्लम है, तो लोग सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन छोड़ छाड़ के कैसे बैठेंगे? जीव छोड़ छाड़ के बैठ ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षण अपी, भगवान बोलते हैं कि एक क्षण के लिए भी आप खाली नहीं बैठ सकते, हमेशा जीव को कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। यदि आप बाह्य रूप से भी बैठ गए तो मन का हमेशा चालू रहता है प्लानिंग, और थोड़े समय बाद वो व्यक्ति करेगा ही फिर कुछ ना कुछ। तो खाली नहीं बैठा जा सकता, कर्म को नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस कर्म को सही प्रकार से करना है। जैसे कि मरकरी होता है पारा, पारा यदि खा ले कोई व्यक्ति तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जानते हैं पारा मरकरी सब जानते हैं, हाँ, थर्मामीटर में जो होता है उसकी यदि कोई खा ले तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन वही पारा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एक दवाई के रूप में जब प्रयोग करता है तो एक व्यक्ति की जान भी बचा सकता है वो। तो वही कर्म है, वही कर्म से क्या होगा, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, और वही कर्म से क्या होगा, आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उसमें बच भी सकते हैं। तो किस प्रकार से कर्म करना है ये कला है। तो यही कला भगवद गीता में सिखाई गई है कि वो कर्म में भगवान के लिए करना है। जैसे कि जब अभी तो खैर सब MP3 प्लेयर वगैरह आ गए, पहले कैसेट होते थे ना, टेप चलता था। तो जब वो चलता था तो एक तरफ से घूमता था, एक तरफ से कम हो रहा है और दूसरी तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से कर्म भी है, यदि हम अकर्म करेंगे तो वो हमारा कर्म होता जाएगा, यदि कर्म करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये कर्म विकर्म और अकर्म ये तीन चीज हैं, ये आपको समझ में आए। कर्म मतलब पुण्य कर्म, यज्ञ दान तप, कोई व्यक्ति मान लीजिए यज्ञ करता है दान करता है तो उसको अगला जन्म मिलता है जिसमें उसको भौतिक सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा कुल, सुंदर रूप, बहुत धन, ये सब प्राप्त होगा, विद्वता, समाज में उसका नाम बढ़ेगा, लेकिन रहेगा भौतिक जगत में। तो चाहे कोई व्यक्ति सुंदर भी हो धनवान भी हो लेकिन फिर भी उसको क्या सामना करना पड़ेगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा, वृद्धावस्था का सामना करना पड़ेगा, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो तो इसलिए ये जो कर्म है ये भी हमको क्या करता है, इस जगत में बांधता है। कोई विकर्म करेगा, बुरा कार्य करेगा, पाप कर्म करेगा, तो हो सकता है उसको अगले जन्म में एक आंख ही ना हो, दोनों आंख ना हो, पैर ना हो, बोल ना सके, एकदम गरीब, पैसा ना हो, दुखी दुख। तो ये सब विकर्म का परिणाम, या नरक में जाएगा या नीचे की योनि में जाएगा। लेकिन यहां पर भगवद गीता जो चर्चा कर रही है वो चर्चा किसकी कर रही है, अकर्म की। कि ना कर्म ना विकर्म, केवल भगवान के लिए कर्म, क्योंकि जिसके करने से क्या होता है, हम सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कर्म मतलब ये यहां पे ये दान कर रहा है, विकर्म मतलब ये गोली चला रहा है, और अकर्म मतलब क्या कर रहा है, हाँ सेवा कर रहा है। तो जीवन एक तैयारी है और मृत्यु उसकी परीक्षा है। तो यदि हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी अपने जीवन को अच्छे से चलाएंगे, तो मृत्यु के समय में हम क्या कर पाएंगे, भगवान का चिंतन कर पाएंगे, नहीं तो वो संभव नहीं है। तो इसके बाद अभी अगला विषय आता है कि जो अकर्म की बात हम कर रहे हैं, ये अकर्म का अभ्यास कैसे किया जाए। अकर्म का पालन हमारे व्यवहारिक एवं पारिवारिक जीवन में कैसे करें, ये अगला प्रश्न है। क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी समझ ली है, क्या क्या थ्योरी समझ ली है, हमने समझ लिया है कि हम इस जगत में सुखी नहीं हो सकते, दुख आ रहे हैं, ये दुख कोई व्यक्ति दे रहा है, कौन है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति क्यों दे रहा है, हम कौन हैं, कर्मों के नियम भी हमने समझ लिए, काल का प्रभाव भी समझ लिया, और अभी हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जीवन में सुखी होना है तो कर्म और विकर्म से बाहर निकलकर क्या करना पड़ेगा, अकर्म करना पड़ेगा। अपने मिथ्या अहंकार, अपना मान सम्मान, अपना दिखाने की अपेक्षा हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो हम व्यवहारिक जीवन में कैसे करें, पारिवारिक जीवन में कैसे करें, उसकी चर्चा अभी आगे होने जा रही है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो अकर्म का अर्थ है योग। योग मतलब क्या, जोड़ना, किसके साथ जोड़ना, भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ना। तो अभी हम समझ गए हैं कि हम भगवान से बिछड़ गए हैं, इस जगत में दुख भोग रहे हैं क्योंकि हम विकर्म करते हैं जाने में और अनजाने में, और यदि सकाम कर्म भी करते हैं, यदि अच्छे कर्म भी करते हैं, तो उनको भोग करने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, और भौतिक जगत में आना मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख तो आ ही जाएगा। आप यदि किसी का कुछ बुरा नहीं भी करना चाहेंगे ना, तो भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, शांति से खड़े हैं, खाली पीली में कोई व्यक्ति क्या करता है, झगड़ा करने के लिए तैयार, फिर झगड़ा हो गया तो एक बार फिर मारपीट हो जाती है फिर। तो ये भौतिक जगत के जो गुण हैं इनसे बचा नहीं जा सकता। कई बार यदि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं देखो ये भगवद्गीता वगैरह क्या करना, क्यों भगवान क्यों को बीच में लेके आ रहे हो, देखो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी से कुछ बुरा नहीं चाहता, मैं सबका अच्छा करता हूं, अच्छे की अपेक्षा करता हूं, तो ऐसा रह सकते हैं क्या इस भौतिक जगत में, हम किसी का बुरा ना भी करें तो भी ये जगत हमको रहने देगा क्या। और पहली बात तो ऐसी है कि किसी का बुरा किए बिना रह ही नहीं सकते, कम से कम कीड़े मकोड़ों को तो मार ही रहे हैं हम, उनका तो बुरा कर ही रहे हैं, कितने सारे पौधों को मार रहे हैं खाने के लिए, है जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को मार के जिंदा रहता है, इधर हिंसा के ऊपर जिंदा है पूरा, हर व्यक्ति हिंसा ही चल रही है, इधर अंदर शरीर के अंदर पूरा युद्ध चल रहा है। जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में, इतने सारे बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी, जब भी हम पानी पीते हैं कुछ खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और अंदर जाते हैं, सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, तो ऑलरेडी वो युद्ध कर रहे हैं, हमको बीमार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारे शरीर की जो वो होती है क्षमता युद्ध करने की कम हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमसे जीत जाते हैं, तो वो भी युद्ध कर रहे हैं, वो भी हिंसा कर रहे हैं। तो पूरा ये जगत हिंसा पे आधारित है, इसमें हम कैसे अच्छा रह सकते हैं किसी के प्रति। अच्छाई वही है कि कम से कम हम यहां से निकलें और जिस व्यक्ति ने ये जगत बनाया है उसको हम प्रसन्न कर सकें किसी ना किसी प्रकार से। तो ये जो योग है, योग मतलब हम फिर से उन भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। किन के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे सब दुखों को दूर कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं कि यदि आप सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओगे तो क्या करूंगा मैं आपको सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं है। तो इसलिए अभी हम सब कुछ छोड़कर भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो वो संबंध कैसे बनता है? तस्माद योगी भवार्जुना। भगवान बोलते हैं आप क्या बन जाओ? योगी बन जाओ। तो कई बार अभी योग के ऊपर समाज में कई गलत धारणाएं हैं कि योग मतलब क्या, एक्सरसाइज करना। तो अभी पहले समझना जरूरी कि योग क्या नहीं है। जैसे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग करना नहीं है, कर सकते हैं करना है तो, लेकिन उससे भगवान मिलने वाला नहीं है, उससे अकर्म होने वाला नहीं है। शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा वो कर सकते हैं आप, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य और अधिक इंद्रिय तृप्ति करना नहीं। कई बार लोग केवल योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकें, और अच्छे से खा सकें, भोग कर सकें, स्त्री का संग कर सकें, या आयु बढ़ाना नहीं है। कई बार लोग योग करते हैं जिससे उनकी आयु बढ़ जाए, लेकिन भागवतम बोलता है कि ज्यादा आयु का क्या लाभ। पेड़ जो है, कुछ पेड़ हजारों साल तक जीवित रहते हैं। यहां पर देखो एक पेड़ का फोटो है, इधर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये पेड़ हजारों साल से है और इतना मोटा है कि इसके बीच में से सड़क बना दी गई है। सच्चा पेड़ है, झूठी मूठ का नहीं है, अमेरिका में है। तो ऐसे पेड़ का क्या लाभ जीने का, क्योंकि उसको कुछ आत्म साक्षात्कार तो वो कर नहीं सकता, एक ही जगह खड़ा है बस है? लोग आके उसको परेशान करते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बीच में सिर्फ रोड भी बना दिया अभी तो, फिर भी खड़ा है उधर। तो ऐसा जीवन का क्या लाभ। तो केवल उम्र बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए यदि कोई जी रहा है तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितने भी महापुरुष होते हैं वो कोई ज्यादा समय नहीं रहते। शंकराचार्य थोड़े समय रहे, चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय रहे, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह थोड़े समय रहे, लेकिन थोड़े समय में उन्होंने कितना कुछ कर दिया, जिससे कि पूरा समाज अभी तक और आने वाले समय में भी लाभ उठाने वाला है। तो जीवन का मूल्य लंबा समय में नहीं है, बल्कि किस गुणवत्ता का जीवन हम बिता रहे हैं उसमें है। और कि योग क्या नहीं है। कई बार योग करने से लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धियां प्राप्त करना मतलब हाथ में से राख बनाना, हाथ खोल के आपको क्या निकाल के देंगे, राख निकाल के देंगे, या हाथ में से कुछ दवाई निकाल के देंगे, या जैसे आप हवा में ऊपर उड़ सकते हैं थोड़ा सा, जैसे बच्चा ना ऊपर उठ रहा है देखो 2 इंच 4 इंच 5 इंच, या पानी के ऊपर आप चल सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि ये सिद्धियों का मूल्य क्या है। आप नाव वाले को पैसा दे के भी 1 रुपये में नाव पार कर सकते हैं, तो 1 रुपया आपकी सिद्धि का मूल्य है। और ये राख निकाल के दे रहे हैं, दवाई निकाल के दे रहे हैं, ये तो डॉक्टर भी दे सकता है, डॉक्टर से भी सही हो सकते हैं। तो योग सिद्धियों का मूल्य नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, भौतिक है, भौतिक जगत में ही हमको फंसा देती हैं, ऐसा नहीं कि हमको भगवान के पास ले जाती हैं। तो योग व्यक्ति जो है योग साधना के द्वारा कई बार सिद्धियों में फंस जाता है, तो वो भी उद्देश्य नहीं है। ध्यानस्थ योगी है ये। तो योग वास्तव में क्या है? वास्तविक चेतना और परम चेतना अथवा जीव और भगवान का संबंध है योग। जैसे कि आपने बताया कि हमको अपना संबंध स्थापित करना है, संबंध है ऑलरेडी, एक्चुअली वो भूल गए हम। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराये उदय। हर जीव का संबंध ऑलरेडी है, वो संबंध कभी टूट ही नहीं सकता है। जैसे माँ बाप और बच्चे का संबंध कभी नहीं टूटता है। बच्चा यदि छोड़ के भी चला जाए माँ बाप को, तो भी माँ बाप के साथ उसका संबंध रहता है, माँ बाप उसको हमेशा याद करते रहते हैं, और वो वापस आएगा तो माँ बाप उसे जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान तो हमारे लिए तैयार बैठे हैं। एक कदम यदि हम भगवान की ओर उठाएंगे तो भगवान हमारी ओर 100 कदम उठाएंगे, लेकिन हम ही हैं जो भगवान की ओर नहीं मुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की ओर अपना कदम बढ़ाना है। योगी वह व्यक्ति है जिसका जीवन एवं कार्य भगवान के साथ उसका संबंध पुनर्स्थापित करने में निर्देशित रहे। मतलब उसका पूरा जीवन इसी पर आधारित है। वो सुबह शाम रात हर क्षण ये सोच रहा है कि कैसे मैं अपने भगवान को प्रिय हो जाऊं, कैसे मैं भगवान का चिंतन कर सकूं, स्मरण कर सकूं। इसलिए कृष्ण भावनामृत का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो ये है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि किसी ना किसी प्रकार से हमें कृष्ण का स्मरण करना है और कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है। यदि ये चीज का हम पालन करेंगे तो बाकी कोई चीज की फिर आवश्यकता नहीं। लेकिन बाकी सब कर रहे हैं और कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो फिर उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। तो अभी योग के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं जो आप समझिए थोड़ा। ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देंगे कि जो मनुष्य योनि है उसमें कुछ लोग होते हैं वो नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ लोग नियम को तोड़ने वाले होते हैं, है ना। तो जो नियम का पालन करने वाले हैं उनमें चार प्रकार के लोग हैं। पहले कौन से हैं? कर्मी। कर्मी मतलब कर्मकांडी, मतलब जो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं लेकिन शास्त्रों को स्वीकार करने का उनका केवल एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है कि शास्त्रों से मुझे भौतिक सुख मिले। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए? भौतिक सुख मिलना चाहिए, धन संपत्ति सुख जो भी है वो मिलना चाहिए। पंडित जी को वो बोलता है, पंडित जी जो यज्ञ करना है करो लेकिन इतना धन मिलना चाहिए, या अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, या पुत्र मिलना चाहिए। तो इसको को बोला जाता है कर्मकांड। क्या बोला जाता है इसे? कर्मकांड। कर्मकांड मतलब आप भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर दूसरे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो लोग हैं जो समझ गए हैं कि भाई इस भौतिक जगत से जो सुख है वो सुख है ही नहीं, चाहे सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, बच्चे हो, धन हो, ये कोई भी चीज हमको सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो वो इस जगत को नकारने का प्रयास करते हैं, नेति 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 नेति, कुछ नहीं चाहिए इस जगत का, एकदम क्या बन जाओ आप, ज्ञानी बन जाओ, सब चीजों से अनासक्त हो जाओ, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ, कंदमूल खाओ, हैं? किसी के साथ संपर्क मत रखो, अकेले में ही बस शास्त्र पढ़ते रहो और समझने का प्रयास करते रहो कि आप कौन है। तो ये कौन है? ज्ञानी, ज्ञान योगी। ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अपने बलबूते पर कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। और दूसरा कौन सा? इसके बाद अष्टांग योगी। अष्टांग योगी मतलब वो आठ अंग होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये आठ अंग हैं। तो ये तो बहुत कठिन होते हैं, ज्ञान योग भी बहुत कठिन है। तो इसमें भी करके क्या करता है व्यक्ति? ध्यान करता है। पहले तो यम नियम इतने आसान नहीं है पालन करने, यम नियम जो करना है जो नहीं करना है, फिर आसन, बहुत सारे आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, फिर धारण, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सारी इंद्रियों को शट डाउन करना, बंद कर देना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, जंगल में जाना पड़ता है उसके लिए, शहर में रह के नहीं कर सकते हैं। और फिर भी ऐसा नहीं कि उसको ऊंची गति प्राप्त हो जाएगी तुरंत ही, वो व्यक्ति क्या होता है, योग सिद्धियों में फंस जाता है। योग सिद्धियां जब आने लगती हैं तो उसको लगता है चलो ये तो अच्छी चीज है, भौतिक चीजों में फंस जाता है फिर से। और उसके बाद है भक्ति योगी। भक्ति योगी मतलब कौन? जो भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहा है, उसको पूर्ण ज्ञान है कि भगवान है और मुझे सब कुछ किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। तो आपके नोट्स में इसका सबका विवरण दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। अभी कर्मी में दो प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्मी और सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब जो मैंने अभी बताया कर्मकांडी, मतलब उनको यज्ञ दान तप करना है, उनको धन चाहिए, विद्या चाहिए, बल चाहिए, स्वर्ग लोक में भी जाने की इच्छा होती है उन्हें, क्योंकि शास्त्र में वो पढ़ते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं, और क्या क्या है? हाँ जी, सोमरस है, और क्या है? भोग वासना की सब संपत्ति, सब सामग्री उपलब्ध है आसानी से। यहाँ पे तो पृथ्वी पर कुछ चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, वहां आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि वो मेहनत आपने इधर कर ली है, यज्ञ करने की मेहनत कर ली है, ऑलरेडी पुण्य कमा लिया है। जैसे कि जब छुट्टी पे जाता है व्यक्ति, खंडाला, लोनावाला, ऊटी वगैरह, तो वहां मेहनत नहीं करता है, वहां केवल क्या करता है? भोग करता है, मजा करता है, क्योंकि पहले भोग मेहनत कर ली है ना, मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके गया है उधर। उसी तरह जब वो पृथ्वी पर मेहनत करता है, यज्ञ करके, दान करके, तप करके, वो मेहनत के द्वारा वो पुण्य अर्जित करता है, और उन पुण्य को अर्जित करके वो कहां जाता है? स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में जाके वो पुण्य को खर्च करता है। मुफ्त में नहीं मिलता भोग उदय, पुण्यों की करेंसी, पुण्यों के नोट होते हैं, वो देने पड़ते हैं, और जैसे नोट कम होते जाते हैं पुण्यों के, वो नीचे गिरता है। फिर छीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, तो वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में मृत्यु होने से पहले उसको धक्का दे देते उधर से, जैसे कुछ अस्पताल होते हैं, वो बोलते हैं हमारे यहाँ कोई मरता नहीं, क्योंकि जैसे ही पेशेंट मरने वाला होता है उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो वो इतना रोने लगता है वो, जब वो स्वर्ग से उसको धक्का मारते हैं तो रोते रोते वो गिरता है, उसके आंसू से वो गिरता है वो नीचे, वो बारिश होती है उसमें आ जाता है वो, और फिर वो गेहूं में प्रवेश करके जमीन में गिरता है, फिर गेहूं में प्रवेश करता है अनाज में, फिर व्यक्ति अनाज खाता है, और अनाज खाने के बाद वो वीरे बनता है, वीरे बनने के बाद वो स्त्री के गर्भ में जाता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो यज्ञ करता है, यज्ञ करके फिर स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में जाके फिर नीचे आता है, फिर वो ऐसे वो उसका चक्र चालू रहता है, यदि स्वर्ग गया तो, नहीं तो यज्ञ नहीं किया तो कहां जाएगा? नरक में या पशु योनि में, और यदि यज्ञ किया तो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाने के बाद फिर उसका पतन होगा, और पतन होने के बाद फिर किधर? बारिश के द्वारा नीचे आके अन्न में प्रवेश करके, फिर वीर में प्रवेश करके, गर्भ में प्रवेश करके फिर उसका जन्म होता है। तो ये सकाम कर्मी है। लेकिन एक निष्काम कर्मी भी होता है, जिसकी चर्चा भगवद्गीता में की गई है, कि वो करता है कार्य, लेकिन करने के बाद आसक्त है वो कार्य से, उसका कुछ फल वो भगवान को देता है। तो निष्काम कर्मी जो होता है वो धीरे धीरे भक्ति के स्तर पर आ सकता है, सकाम कर्मी भी आ सकता है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि शास्त्रों में ही सकाम कर्म का वर्णन किया गया है। क्यों वर्णन किया गया है शास्त्रों में सकाम कर्म का? क्या लाभ है सकाम कर्म करने से? हाँ जी, कम से कम बुरा चीज नहीं करेगा, और क्या लाभ है? उसको कम से कम श्रद्धा है आत्मा के अंदर कि दूसरा जन्म होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में भोग मिलेगा ना, कम से कम नास्तिक से तो अच्छा है। स्वर्गलोक के बारे में ज्ञान, मतलब दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, उसको एक अथॉरिटी स्वीकार करनी पड़ रही है, वेदों के प्रति उसकी श्रद्धा है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा है। और चौथी चीज है कि ये जो सकाम कर्म के यज्ञ वगैरह है उसमें भगवान विष्णु के भी नाम का उसे उच्चारण करना पड़ता है। तो धीरे धीरे उसका क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। तो ये नियम पालन करने वाले हैं, जैसे कि, और बाद में क्या होना है, ये भक्ति योगी है, जिसको सर्वोच्च और सर्वोत्तम योग पद्धति बताया गया है भगवद्गीता में। यदि आप छठा अध्याय पढ़ेंगे तो छठा अध्याय जो है ध्यान योग है उसका नाम, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सार है, अंतिम श्लोक जो है, उसमें भगवान बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा पारायण है, जो मतलब मेरे जितने भी योगी हैं, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी, उसमें जो मेरा पारायण है, जो मेरे श्रद्धा रखता है, मेरी शरण लेता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझमें परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी योगियों में वो क्या है? श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशां, तो इसलिए हमको वैसा योगी बनना है। तो तीन शर्तें हैं भक्ति करने के लिए। कौन सी तीन शर्तें हैं? भक्त, भगवान और भक्ति। तो ये तीनों शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत हैं और भक्ति भी शाश्वत है और भक्ति भी शाश्वत है। और नवदा भक्ति के बारे में वर्णन है, आपको तो मालूम होना चाहिए ये सब, आप भक्त हैं। तो नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नौ प्रकार की भक्ति है। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तनम भगवान का नाम का गुणगान करना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना, और यदि आप श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो क्या होगा? स्मरणम होगा, भगवान का स्मरणम होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नौ भक्ति के जो अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, अर्चनम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, अर्चनम वंदनम दस्यम भगवान को प्रार्थना अर्पित करना, वंदनम दस्यम मतलब उनकी सेवा करना, आत्मनिवेदनम सब कुछ उनको समर्पित करना। और गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? हाँ जी, अर्च विग्रह की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण है, कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण है, कोई एक बताइए इन तीनों में से, चारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? आपने बताया अर्च विग्रह की, क्यों? जो गृहस्थ होता है उसे भगवान को केंद्र बिंदु बनाना होता है, तो अर्च विग्रह जो होते हैं जीवन के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आपका क्या कहना है? यदि श्रवण ही सही नहीं करेंगे तो अर्च विग्रह की सेवा कैसे करेंगे? अर्चा विग्रह क्या बन जाएगा? गला ग्रह बन जाएगा, गले में बर्डन, ये गुरु ने क्या दे दिया, रोज सुबह उठ के भोग लगाना है, आरती करना, कपड़े बदलना भगवान के, बच्चों बचपन में करते थे एकदम गुड्डे गुड़िया का, अभी क्या है ऐसा हो जाएगा, है ना? जैसे बच्चे करते हैं ना, गुड्डे गुड़ियों को खेलते हैं, उनको भोग बनाते हैं, उनको शादी करते हैं, उनके कपड़े पहनाते हैं। तो यदि हम श्रवण नहीं करेंगे, अर्चा विग्रह का गुणगान नहीं सुनेंगे, दोनों पद्धति साथ में चलती है, पांच रात्रि का विधि और भागवत विधि, तो ये दोनों विधि जो है रेल की दो पटरियों के समान है, इन दोनों को साथ में चलाना पड़ता है। हालांकि मेन जो प्रोसेस है कलयुग का वो है नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन मेन है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम संकीर्तन करने के लिए बहुत योग्यता की आवश्यकता है, और योग्यता की आवश्यकता नहीं भी है, दोनों ही है। लेकिन बात कहने की ऐसी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, भोग बहुत होता है, भोग की सुविधाएं बहुत होती हैं, तो भोग की सुविधाएं जब बहुत होती हैं तो घर में स्थापित करना आवश्यक है भगवान को अर्च विग्रह के रूप में, कि आप हमारे घर के कौन हैं, स्वामी हैं और मैं नौकर हूं, ये घर आपका है और इस घर में जो भी आता है वो आपका है, हालांकि मेरी पत्नी और बच्चे भी आपके हैं, मेरे नहीं है, और मेरी मेरी केवल एक ही कार्य है कि इनकी देखभाल करना, इनको सब प्रकार से सुविधाएं प्रदान करना आपकी सेवा के लिए। तो इसलिए वो भगवान को लेके आता है अर्च विग्रह के रूप में। और दूसरा लाभ है अर्च विग्रह का, कि जब अर्च विग्रह घर में होते हैं तो बहुत स्वच्छता बना के रखनी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के स्नान करके सबसे पहले क्या करना है, हमें भगवान को उठाना है, तो भगवान को नहीं उठाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको भोग लगाना है, तो ऐसा नहीं कि रात का ही खा रहे हैं आप, तो आप बोले सुबह को तो भोग लगाना है, सुबह बनाएंगे, तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है और सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। तो इसलिए अर्चा विग्रह केंद्र बिंदु में लाने बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ यदि केवल अर्च विग्रह की सेवा करेंगे और भगवान का नाम जप और कीर्तन नहीं करेंगे तो वो सेवा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और यही कारण है कि भारतवर्ष में हजारों लाखों मंदिर हैं, और क्योंकि वहां पर भागवत पाठ नहीं होता है, नाम संकीर्तन नहीं होता है, इसलिए वहां की जो अर्च विग्रह की सेवा है वो भी अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है, बंद होते जा रहा है मंदिर, कोई किसी को रुचि नहीं है उसमें। लेकिन जिस मंदिर की तो बात छोड़िए, जिस घर में अर्च विग्रह है और जो नाम संकीर्तन कर रहा है और भागवत पाठ कर रहा है, वो घर एक मंदिर ही है, उसमें कुछ कमी नहीं है, वहां से बहुत ज्यादा प्रचार हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने घर में अर्च विग्रह लाकर क्या करना है, साथ साथ पांच रात्रि का विधि और भागवत विधि। पांच रात्रि का विधि कौन सी है, अर्च विग्रह की सेवा, और भागवत विधि कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो दोनों करना है। लेकिन यदि मेन देखा जाए तो कौन है दोनों में, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन जरूर करना है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं, निष्ठावान और श्रद्धा होती है और श्रद्धा नहीं होती है। तो निष्ठावान जो होते हैं, पहले वो भय इसके कारण भगवान की सेवा करते हैं। देखा आपने कुछ ऐसे लोग, उनको भय होता है। इस दुनिया में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो भय के ऊपर कार्य करते हैं। वो बोलते हैं यदि आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको भगवान क्या करेंगे, दंड देंगे, आपको हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ेगा, जहन्नुम में जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको इतनी यातनाएं मिलेंगी। तो डर के मारे व्यक्ति क्या करता है, धर्म का पालन करता है। उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो आशा, इच्छा होती है उन्हें, क्या कि यदि मैं कुछ करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे कुछ फल मिलेगा, जैसे सकाम कर्मी के बारे में बताया हमने। उसके बाद जो निष्ठावान है, कर्तव्य के रूप में कार्य करते हैं कि नहीं, भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, सब कुछ दे रहे हैं, तो कम से कम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के लिए कुछ करें। और उसके बाद चौथा है प्रेम, मतलब व्यक्ति को प्रेम हो जाता है भगवान से, या वो प्रेम विकसित करता है, और उसमें व्यक्ति स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही आकर्षित होता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो इन चारों में सबसे नीचा कौन सा है और सबसे ऊंचा कौन सा है, प्रेम सबसे नीचा है, ऊंचा है, और सबसे नीचा कौन सा है, क्यों, ओके, और कुछ आप क्या बताए, हाँ जी, हाँ जोर से बोलिए, हाँ, भय जो ऐसा है कि भय मतलब उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, भय मतलब उसमें प्रेम तो है ही नहीं, कर ही नहीं सकते आप। तो समझ में आया ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है इसको हम ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। और प्रेम जो होता है, प्रेम में कुछ आशा नहीं की जाती है, अहोतु की अप्रतिहता होता है वो, मतलब आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि भगवान मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ भी ना करे आपके लिए, फिर भी आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो प्रेम है। जहां पर कुछ आशा आ गई वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार हो गया फिर, निस्वार्थ प्रेम। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको मार भी रहा है, पीट भी रहा है, फिर भी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। आश्लिष्य वा पाद रतम पिनष्टुमाम आदर्श नाम मतलब हतम करो तु वा। किसका है ये श्लोक, किसने गाया है, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है कि भगवान आप मुझे कुछ भी क्यों ना करें, चाहे आप मेरा तिरस्कार करें या मेरा आलिंगन करें, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, वो प्रेम है। और निष्ठाहीन में कौन है, कर्मी मतलब भौतिकवादी कर्मी, उनको भगवान में कुछ रुचि नहीं है। नास्तिक मतलब वो क्या करते हैं, वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते। और शून्यवादी कौन है, कौन है शून्यवादी, हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाएगा बाद में जब आपकी मृत्यु होगी, तो कुछ है ही नहीं, हाँ तो इसलिए हमें भगवद गीता का अपने जीवन में पालन करना है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि भक्ति योग का पालन करना बहुत आसान है, बाकी के जो योग हैं बहुत कठिन है। इतना सरल है भक्ति योग, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास जो भी है आप उसको अर्पित कर सकते हैं। और फिर भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में बोलते हैं ना चिरात, कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाता है। तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं उसको उठा के ले जाता हूं, मैं स्वयं आता हूं और उसे ले जाता हूं। बाकी की योग पद्धति में व्यक्ति को खुद से प्रयास करना पड़ता है ऊपर उठने का, खुद से प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ये पद्धति में क्या है, भगवान स्वयं आके ले जाते हैं। जैसे कि गजेंद्र, गजेंद्र की कहानी सुनी है, कितने लोगों ने सुनी है, सबने सुनी है। तो गजेंद्र जो थे वो भगवान की भक्ति के रूप में फूल अर्पित किए, भगवान को पुष्पम फल अर्पित किए प्रेम के साथ, और पुकारे तो भगवान स्वयं आ गए उनको ले जाने के लिए। और भगवान इतने आतुर हो गए उनके ले जाने के लिए कि भगवान गरुड़ पे आ रहे थे, लेकिन भगवान बोले अरे गरुड़ तुम बहुत धीरे चल रहे हो, तो भगवान ने गरुड़ को अपने कंधे पर रख लिया और भाग के आने लगे उनको बचाने के लिए। तो भगवान इतने आतुर हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के लिए भी भगवान ने स्वयं कौन क्या भेज दिया, प्लेन भेज दिया बाद में, पहले नारद मुनि आए लेकिन बाद में क्या आ गया, प्लेन आ गया। तुकाराम जी के लिए भी प्लेन आ गया। तो भक्ति योग में कुछ ज्यादा कष्ट नहीं है, भक्ति योग आप प्रेम के साथ जो भी है भगवान को अर्पित कीजिए और भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञातवा मोक्ष से अशुभात, भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं कि मोक्ष से अशुभात, आप सब प्रकार के अशुभ चीज से मुक्त हो जाएंगे। अशुभ क्या है, अशुभ मतलब जो बुरी बुरी आदतें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे मुक्त हो जाएंगे और जीवन में सब प्रकार की अच्छी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। तो जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान पे भगवद गीता क्यों दी और अर्जुन को ही क्यों दी, इसका उत्तर बता सकता है कोई? हाँ बताइए। भक्तों सी में सखा चेती, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो उनके भक्त हैं, उनके सखा हैं, वही केवल भक्ति समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना और युद्ध के मैदान में क्यों चुना। और लोग को बोलने दीजिए, पीछे कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। ओके, और कोई कारण बताएंगे? तो अर्जुन की क्या विशेषता है उसमें? नहीं वो नहीं, वो ऑलरेडी बता दिया है सबने, वो हम सबके लिए, क्योंकि हम भी अर्जुन के समान क्या है, गृहस्थ हैं और युद्ध के मैदान में सब लोग बहुत बिजी होते हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है भक्ति के लिए, तो युद्ध के मैदान में क्या खाली बैठा था क्या अर्जुन? वहां पर तो एक एक क्षण वहां बड़ा कीमती होता है। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब अर्जुन कर सकता है जो गृहस्थ है, अर्जुन कर सकता है जो इतना बड़ा योद्धा है, जहां उसको करोड़ों लोगों के साथ युद्ध करना है अभी कुछ ही मिनट के बाद, वहां पर वो 1.5 घंटा युद्ध से पहले भगवद गीता सुन रहा है, तो जब अर्जुन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कई बार लोग बोलते हैं अभी हम नहीं करेंगे, हम बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में कैसे करेंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कैसे बात बनेगी? क्योंकि कुछ भी करने के लिए कुछ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है और दृढ़ निश्चय वृद्धावस्था में कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वृद्ध लोग नहीं कर सकते, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं रहती। और कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करना है तो शरीर में कुछ तो शक्ति चाहिए ना, जप करने के लिए शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, भागवत पढ़ने के लिए कुछ कुछ बुद्धि चाहिए समझने के लिए। तो व्यक्ति जो है, जो जीवन का महत्वपूर्ण समय है, वो इंद्र तृप्ति में और भोग में निकाल देता है और जब शरीर में कुछ नहीं बचता तो बोलता है अभी मैं इसको भगवान को दूंगा। जैसे कि गुलाब का फूल लिया, पहले सूंघा, फिर उसने कोट में लगाया, फिर उसने इधर पीछे बाल में लगाया, फिर शाम को जब मुरझा गया तो बोला भगवान अभी आपके लिए। तो ये कोई बात हुई? ये गलत बात है। तो इसलिए जब गुलाब जो है, जब फूल जो है वो सुगंधित है, तब उसको अर्पित करना है, तब उसका कुछ मूल्य। और यदि नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से लेट हो गया है, तो सुबह से शीघ्रम, कम से कम अभी तो करो, अभी लेट मत करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि सभी समय युद्ध करते हुए अर्जुन आप मेरा क्या करो, चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। तो अर्जुन के लिए यदि संभव है तो हम बोलेंगे अर्जुन को तो भगवान ने स्वयं दिया था ज्ञान, हमको तो नहीं दे रहे हैं भगवान स्वयं, तो हमारे लिए क्या आशा है? भगवान सामने उपलब्ध थे अर्जुन के, उपस्थित थे, हमारे पास भगवत गीता है, और कुछ गुरु शिष्य परंपरा है, और कुछ? तो वही ज्ञान अभी उपलब्ध है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा को ढूंढना है, और गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है? तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? ताकि हम कोई बहाना ना बना सकें। साधारण बहाने क्या हैं? भगवद गीता किसके लिए है? लेकिन अर्जुन तो इतने वृद्ध नहीं थे, विरक्तों के लिए है, लेकिन अर्जुन वैरागी भी नहीं थे। समय का अभाव, अर्जुन के पास भी समय का अभाव था। यदि श्री कृष्ण स्वयं मुझे सुनाएंगे तब हम सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मूल भगवद गीता कहां से मिलेगी? प्रमाणिक गुरु की शरण लेना पड़ेगा। प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं क्या है? परंपरा में हो। परंपरा मतलब क्या? परंपरा मतलब भगवान ने जिसको दिया है, जैसे कि चार लोगों को दिया भगवान ने। कौन है चार लोग? ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी जी और चार कुमार, है ना? दूसरा उनका गुण क्या है? गुरु का क्या होना चाहिए उनमें? इंद्रिय संयम होना चाहिए। और क्या है उनका गुण? भगवान की सेवा में सदैव रत होने चाहिए, और शास्त्रों के सार के ज्ञाता होने चाहिए। अभी शास्त्रों के सार का ज्ञाता का अर्थ ये नहीं है कि उनको सारे शास्त्रों के सारे श्लोक याद होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शास्त्र यदि उनको दिया जाए तो उसका सार निकाल के वो आपको बता सकते हैं, उसका एसेंस आपको दे देंगे। कुछ भी परिस्थिति होगी उसमें वो उसका जो सार है उससे वो च्युत नहीं होंगे। इसलिए तो जो बड़े बड़े साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, लोग उनके शरण लेते हैं और उनसे पूछते हैं महाराज अभी क्या करें, तो उनका जो मार्गदर्शन होता है, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी कंफ्यूज करने वाली क्यों ना हो, भ्रमित करने वाली क्यों ना हो, वो आपको ऐसा सॉल्यूशन देंगे, ऐसा हल देंगे कि आपकी भक्ति और बढ़ेगी। कृष्ण के प्रति चिंतन आपका कम नहीं होगा यदि उनकी सलाह का हम पालन करेंगे तो। लेकिन भौतिक दृष्टि से यदि हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो जो सलाह होगी वो ठीक नहीं होगी। और जो पांचवी चीज यहां बताई गई है, आचरण। कि यदि कोई आचार्य है तभी वो दूसरे को बोल सकता है कि आप ये मत करो। खुद यदि वो सिगरेट पी रहा है तो दूसरे को कैसे बोलेगा कि आप सिगरेट मत पियो? तो इसलिए गुरु को क्या होना पड़ेगा? आचार्य होना पड़ेगा, कि वो जो बोल रहा है उसका उसे पालन करना आना चाहिए। और चार प्रमाणिक संप्रदाय कौन से हैं जो आपने बताए? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो मेन आचार्य कौन से हैं? रामानुजाचार्य। ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के नहीं, मेन आचार्य की बात हो रही है, शिव जी के बाद विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। शंकराचार्य वैष्णव संप्रदाय में नहीं आते हैं। कौन बोल रहा है शंकराचार्य? शंकराचार्य कहाँ वैष्णव संप्रदाय में आते हैं? वो तो मायावाद का प्रचार करने आए हैं। आप यदि शंकराचार्य बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो, बेसिक में प्रॉब्लम है, एबीसीडी में प्रॉब्लम हो गया है। उनका तो उद्देश्य है नास्तिकवाद का प्रचार करना। तो ब्रह्मा माधव गौड़ संप्रदाय में है हम। इस कौन कौन से संप्रदाय में आता है? तो कहां से शुरू हुआ? कृष्ण ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि ने किसको दिया? व्यास देव ने। चैतन्य महाप्रभु आए, फिर ईश्वरपुरी आए बीच में, फिर यहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्तिदान सरस्वती, प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये परंपरा है। तो अभी गुरु की तो योग्यता पता लग गई, अभी शिष्य की भी योग्यता पता करने चाहिए ना, नहीं तो बात बनेगा नहीं। यदि आपके पास बीज तो बहुत शक्तिशाली है लेकिन जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, तो बीज उबेगा क्या? पति पोटेंट है लेकिन पत्नी जो है वो पोटेंट नहीं है, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो उसी तरह यदि गुरु शक्तिशाली है लेकिन शिष्य यदि योग्य नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसलिए क्या आवश्यक है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। कि एक शिष्य को तद्विद्धि नम्रता पूर्वक शरण लेनी है। किसकी? गुरु की। जैसे पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार से जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यदि आप गुरु के सिर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे तो फिर क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा क्या? जैसे कि एक शिष्य थे, वो एक गुरु के पास गए, बोले कि मुझे कुछ बताओ। तो कुछ बताने से पहले वो ही बोलना शुरू कर देते थे। वो ज्यादा बोल रहे हैं और गुरु कम बोल रहे हैं। तो गुरु ने बोला अच्छा ठीक है, एक गिलास लेके आओ। तो गिलास लेके आए और उसमें उन्होंने गरम गरम दूध डालना शुरू किया। तो गिलास भरने लगा, भर गया और ऊपर से गिरने लगा। तो उसका हाथ जल गया, फेंक दे। तो क्या है? तो बोला ऐसे ही है आपका हाल भी। आपका गिलास ऑलरेडी इतना भरा है पूरा कि जो भी अभी मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या हो रहा है? वो बाहर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना है, हमें ब्लैंक स्लेट बन के जाना है, कोरा कागज बन के जाना है, तभी उस पर लिख सकते हैं गुरु। यदि ऑलरेडी पहले हमने बहुत कुछ लिख के रखा है तो उसको मिटाना पड़ेगा। यदि नहीं मिटाएंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा नहीं है। तो तद्विद्धि प्रणिपाते ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंधविश्वास रखना है कि गुरु जो भी बोले बस आप स्वीकार कर लें। इसलिए बोला गया है परिप्रश्ने न सेवे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए ये कैसा है वह कैसा है। आप यदि गुरु से चुनौती कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ अर्थ नहीं है। जैसे कि अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा कि ये सन गॉड, ये जो सूर्य भगवान है, ये आपके पहले कैसे आ गए, या आप इनके पहले कैसे आ गए? उन्होंने बोला, चौथे अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि आपने ये ज्ञान किसको दिया? विवस्वान को दिया। तो आप उस समय कैसे आ गए? आप तो मेरे साथ ही खेले कूदे बड़े हुए हैं। तो वो ऐसा प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ के ही केवल काम नहीं करना है। प्रश्न के बाद यदि शंका का समाधान हो गया तो परिप्रश्ने न सेवया, सेवा करना आवश्यक है। यदि सेवा नहीं करेंगे और केवल एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। ज्ञान का परिणाम होना चाहिए कि उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल सेवा करें। प्रैक्टिकल सेवा यदि नहीं करेंगे भगवान के मिशन में तो हमारी प्रगति नहीं होगी। तो हमें आतुर होना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कुछ ना कुछ सेवा अपने लिए। ऐसे नहीं कि कोई आएगा बताएगा तो सेवा करेंगे, वो उसके उसके लाभ के लिए नहीं है वो सेवा। सेवा कोई कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जब श्रीमद् भागवतम में ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव मानव, हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, तो मेरे से क्यों 100 रुपए मांग रहे हो? मुझे छोड़ दो ना। आप जाते हो ना जन्माष्टमी पे, या भक्त लोग भी आपस में बोलते हैं कि भाई भगवान की सेवा के लिए कुछ धन दो, स्पॉन्सर करो, भगवान के लिए कुछ सेवा करो। तो बोले भगवान की सेवा में हजारों लाखों लक्ष्मियां खड़ी है ना, तो मेरा क्यों पैसा मांग रहे हो? भगवान के पास कुछ कमी पड़ गई क्या? लक्ष्मी हड़ताल पर चली गई है? जैसे कि जगन्नाथ जी की कहानी है ऐसी कि एक बार लक्ष्मी जी ने निश्चित कर लिया कि अभी जगन्नाथ जी को कुछ नहीं मिलेगा, तो एक साल तक वो भटक रहे थे ऐसे भूखे प्यासे, वो लीला है, वो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि लक्ष्मी जी की कमी हो गई इसलिए भगवान की सेवा के लिए हम आपसे स्पॉन्सरशिप मांग रहे हैं, तो किसकी भलाई के लिए आप पैसा मांग रहे हैं? उनकी भलाई के लिए जो दे रहा है, जो दे रहा है उसका भला होगा। तो इसलिए यह आवश्यक है कि सेवा की जाए लक्ष्मी के द्वारा, या अपने कुछ श्रम दान करके भगवान की सेवा में, या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की सेवा में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम के लिए दान देना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भोग की बहुत सुविधाएं होती हैं, और थोड़ा भी यदि ज्यादा हो गया तो तुरंत विचलित हो जाता है आदमी। लेकिन जब वो दान करता है तो सरल जीवन बिताने पर वो बाध्य हो जाता है, और फिर उसका मन और ज्यादा खुल जाता है। तो ये शिष्य की योग्यताएं हैं। तो जो महान आचार्य होते हैं वो इस भौतिक संसार में आते हैं, और वो ऐसे मंदिरों की स्थापना करते हैं जहां पर इस ज्ञान का वितरण किया जा सके। तो मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं है, मंदिर एक विश्वविद्यालय के समान है जहां पर ज्ञान का वितरण हो, और ज्ञान का वितरण होने से व्यक्ति समझ सके कि मेरी बीमारी क्या है, और बीमारी पता होने के बाद उसका इलाज हो, और इलाज में दवाई दी जाए, और जब दवाई मिले तो व्यक्ति को वो दवाई खाना भी चाहिए। तो जब हम ऐसे मंदिर में आते हैं जहां पर ज्ञान मिलता है, हमें पता लगता है कि हमारी बीमारी है कि हम अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठे हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इसका कारण है कि हमने भगवान से ईर्ष्या की है, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद मोहेन भारता, और उसका इलाज है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और शरण लेने के साथ साथ दवाई खानी है, और दवाई में क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो विशेष रूप से कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो इसलिए मंदिर में एक आचार्य की आवश्यकता होती है जो उन धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके, लोगों को बता सके कि व्यवहारिक रूप से कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है। और जब हम उन आचार्य की शरण लेते हैं तो उस मंदिर का उद्देश्य यह होता है कि हमें साधुओं का संग प्राप्त होता है। मंदिर का मेन उद्देश्य क्या है, साधुओं का संग प्राप्त करना, क्योंकि साधु संग लव मात्र होए सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि एक लव मात्र कितना होता है, एक सेकंड का बारहवा हिस्सा, एक क्षण का बारहवा, उतना भी यदि संग मिल जाए साधु का तो जीवन सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साधु के जो गुण होते हैं उससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए। और साधु कौन है, साधु वो नहीं है जिसकी बड़ी दाढ़ी है, जिसको संस्कृत आती है, या जो बहुत अच्छे से बोलता है। साधु मतलब तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधवा साधु भूषणम। कौन है साधु, जो तितिक्ष्वा है, सहनशील है, कुछ भी चीज सहन करने के लिए तैयार है। जैसे कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनको फांसी पे चढ़ा दिया लेकिन फिर भी वो सहन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान इनको क्षमा कर दो, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा है, उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो किसके लिए, भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको पीट रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई, और मार मार के वो जब थक गए, घबराने लगे, बोले कि अभी हम, आप तो मर ही नहीं रहे हो, और आप यदि नहीं मरोगे तो हमें मार देगा वो अभी काजी है। तो बोले अच्छा, मेरी वजह से आपको मार पड़ेगी, ठीक है मैं मर जाता हूं। तो ऐसी सहनशीलता, तो ये बहुत ऊंचे स्तर की उदाहरण प्रस्तुत किए हैं हमारे आचार्यों ने। और उनको सहनशील होने की क्यों आवश्यकता है, उनको सहनशील होने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस भौतिक जगत में जब भी आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, विरोध होगा, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा होगा, सगे संबंधियों से सबसे ज्यादा होगा, हमारा मन खुद विरोध करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। आप यदि 2-4-5 साल के अभ्यास के बाद बोलें कि भाई अभी बहुत हो गया है, अभी मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, भक्ति से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो छोड़ दिया तो कोई लाभ नहीं है। सहन करना पड़ेगा काम वासना को, क्रोध को, क्योंकि समय लगेगा उसको जाने में। करोड़ों करोड़ों जन्म से ये अनर्थ हमारे हृदय में है, तो अनर्थों से यदि विचलित हो गए और सहनशील नहीं बने तो साधु नहीं बन पाएंगे। फिर कारुणिका, कारुणिका मतलब करुणा, करुणा का होना बहुत आवश्यक है। एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू आके उनको काटने लगा, वो बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे और वो उनको काट रहा है, फिर से आया फिर काट लिया, फिर उन्होंने बाहर निकालने का प्रयास किया फिर काट रहा है। तो एक व्यक्ति बोलता है, अरे उसको मार दो ना, इसको क्यों बार बार ऐसा कर रहे। बोले नहीं, इसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है बचाना, क्षमा करना, करुणा दिखाना। तो ये बहुत ऊंचा स्तर हमारे आचार्य स्थापित करते हैं, लेकिन ये साधु हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही मतलब वो सबको अपनी कृपा देते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। जैसे कि अजात शत्रुवा, उनका एक दूसरा गुण है। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, आप बोलेंगे दुर्योधन था ना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की तरफ से नहीं था, वो दुर्योधन ने उनको अपना शत्रु बनाया। शांत, शांत मतलब उनका मन पूरा शांत रहता है। साधवा, साधवा का अर्थ है जिन्होंने शास्त्रों का पूरा सार को समझ लिया है। और साधु भूषण कि सारे अच्छे गुण, यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरा, देवताओं के भी जितने अच्छे गुण होते हैं, सारे अच्छे गुण होते हैं, वो एक साधु के अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो ये साधु है, तो इसलिए ये साधु का हमें संग करना है, नहीं तो जैसा संग वैसा रंग। यदि आप भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा भौतिकवादी लोगों के संग में, हमारा भी वही कार्य हो जाएगा। और आजकल जो सबसे ज्यादा संग मिलता है लोगों को, वो मिलता है किसका, टीवी का। उसको बोलते हैं वन आइड गुरु, एक आंख वाला गुरु, गुरु जिसकी एक आंख है, एक आंख से दिखा रहा है ना वो, और वो रावण के समान है और हम जो है सीता के समान है, और वो साधु के वेश में आया है। जब टीवी शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों ने खरीदा, तो इन्होंने दूरदर्शन वालों ने क्या किया, रामायण और महाभारत बनाए, जिससे कि सबके घर में क्या आ गया, टीवी आ गया, तो साधु आ गया घर में। लेकिन बाद में उसने क्या किया, हम सबका अपहरण कर लिया। हमारी जो चेतना है वो सीता के समान है, पवित्र निर्मल, लेकिन जब रावण ने प्रदूषित, खैर सीता देवी तो कभी प्रदूषित नहीं हो सकती, लेकिन हमारी चेतना प्रदूषित हो सकती है। हम तो है ही प्रदूषित ऑलरेडी। तो इसलिए जो मुगल 800 साल में नहीं कर पाए, मुगल लोगों ने, मुसलमान लोगों ने कितने देश 800 साल राज किया, वो कुछ नहीं कर पाए हमारी संस्कृति को खराब करने में। ब्रिटिश लोगों ने कितना राज किया, अंग्रेज लोगों ने 150-200 साल राज किया, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन टीवी ने 20-30 साल में कर दिया। सब नग्न अवस्था में अभी घूम रहे हैं, सब गलत गलत कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए इस रावण से हमें बचना है, और यदि नहीं बचेंगे, इस भौतिक संघ को हम जारी रखेंगे, तो जैसे कि कल चर्चा हो रही थी, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सत्वगुण जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। तो कृपया करके इससे आप बचिए, नहीं तो ये ऐसा है कि जैसे आप अग्नि जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जप करके, नाम करके, मंदिर में आके और टीवी देख के फिर से उस पर पानी डाल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। और दूसरा है, मंदिर में आने से हमें गुरु से मार्गदर्शन प्रदान करना है, और जब गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कैसे हमें अपने संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि 99% से भी ज्यादा लोग जो होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। तो संतुलन कैसे बनाना है, जैसे कि जब व्यक्ति को कार चलानी होती है तो उसको पता होना चाहिए कि कार में कितना पेट्रोल है, किस दिशा में जाना है, कितना सावधानी से चलाना है। तो इस समाज में रह के भी कैसे हम प्रदूषित ना हो, वो मार्गदर्शन हमें गुरु से प्राप्त होता है। तो गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्या जननी न सस्यात। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने शिष्यों का उद्धार नहीं कर सकता उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने बच्चों का अधिकार उद्धार नहीं कर सकता उसको पिता बनने का या माता बनने का अधिकार नहीं है। देवम न तस्यान पतिश न शस्यात न चे मोचेत समुपेत मृत्यु। तो ये सब बहुत जिम्मेदारी वाली पदवियां हैं, माता पिता गुरु शिक्षक राजा। तो जो व्यक्ति ये पदवी को स्वीकार करता है तो उसका जिम्मेदारी होता है कि वो अपने बच्चों का या अपने शिष्यों का उद्धार करें, उनको भगवान के बारे में बताए, उनको भगवान की ओर लेके जाए। तो हमें जो है अपने जीवन को मोल्ड करना है, उस ढांचे में डालना है जिससे कि हम अपना भी भलाई करें और दूसरों का भी भलाई करें। और ये चार नियमों का पालन करना है, नशा पान नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है दया सत्य शौच और तप की हानि होती है और हम पाप कर्म में करके अधर्म में फंस कर अपने जीवन को और ज्यादा बंधन में फंसा लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में जो भगवान के नियम हैं, कई बार वो नैतिक दृष्टि से लगते हैं कि कुछ अलग हैं। जैसे कि हम पहले दिन बता रहे थे ऑनेस्टी अमंग थीव्स, कि कई बार चोरों के बीच में क्या होता है ईमानदारी होती है कि हम सब चोरी करेंगे और आपस में मिल बांट के खाएंगे, तो ऐसा नहीं, उनकी मूल में ही गड़बड़ है। तो बेसिक नैतिकता सबसे बड़ी नैतिकता यह है कि पहले जिसका माल है उसको प्रसन्न किया जाए। तो कृष्ण के लिए कार्य करना वो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि अपने लिए कार्य करना। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरा है और आपको अपने कोटे के अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको भूखा मरना है, आपको अपना अपना कोटा है वो आप ले लो, लेकिन दूसरे के उस पर बात आप नजर डालो। और यदि भगवान बोल रहे हैं ऐसा करो तो वैसा करो। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला कि भी आप क्या करो है? झूठ बोल दो। तो वो झूठ नहीं है क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए है। भगवान कृष्ण जो है सब चीजों के परे हैं, उन्होंने धर्म बनाए, उनके नियम बनाए, उन्होंने कानून बनाए। तो मैटेरियल लॉज और आध्यात्मिक लॉज वो अलग अलग हो सकते हैं कई बार। जैसे सरकार के नियम के अनुसार गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नियम के अनुसार यदि करेंगे तो बहुत उसकी बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए हमें ये भौतिक जगत के नियमों का पालन करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो भगवान ने सीधे नियम बताए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें कई बार विरोधाभास दिखेगा, सरकार बोलेगी ठीक है दारू पी सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं, गाय की हत्या कर सकते हैं, लेकिन यदि यह करेंगे तो इतना पाप कार्य है कि गाय की हत्या करने से इतना पाप लगता है कि जितना गाय के ऊपर बाल होते हैं उतनी बार जन्म लेके आपका वध होगा। तो इतना घिनौना कार्य है वो, लेकिन फिर भी लोग उसे करते हैं। तो इसलिए हमें सब ये छोटे मोटे जो धर्म हैं इनका त्याग करके केवल एक व्यक्ति भगवान की शरण लेनी है, और यदि हम भगवान की शरण लेंगे तो अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है आगे देखते हैं, इधर क्या दिखाया। तो मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़िए इधर, भक्तों का संग, असत्संग के खतरे से बचना और गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना। आगे क्या है पढ़िए जोर से। तो चार नियमों का पालन करके हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। और क्या क्या नहीं करना है, अच्छा इसमें क्या बुराई है मांसाहार करने में, पाप तो लगता ही है, पाप के अलावा और क्या बुराई है, चेतना प्रदूषित हो जाती है और हिंसा और भय, ये जो मांस है हिंसा और भय का प्रोडक्ट है, तो हमारी चेतना में भी क्या आ जाता है, हिंसा और भय आ जाता है। और क्या है, और शारीरिक रूप से भी बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं, और नशा पान करने से व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, सब बुरे कार्य करता है, शरीर का विनाश कर लेता है, अवैध यौन संबंध रखने से भी सब बुरी चीजें होती हैं, जब मैंने बताया अभी पहले ये सब डिस्कस कर लिया है। और जुआ करने से क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है धन। तो इसलिए क्या करना है हमें, अपने घर को मंदिर बनाना। कैसे, तो परिवार के साथ में मिलके करना है। क्यों, यदि परिवार के साथ में मिलके करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, साथ में आके करेंगे तो साथ में रहेंगे फिर, नहीं तो सब झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि साथ में आते ही नहीं है लोग आजकल, हैं सब अपने अपनी जगह भागते रहते हैं इधर उधर, साथ में आते नहीं है। लेकिन जब हम साथ में आते हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, हैं साथ में बैठ के यदि हम भोजन लेंगे, साथ में बैठ के यदि हम भगवान की आरती करेंगे, साथ में बैठ के हम मंदिर को सजाएंगे या इसलिए उत्सव मनाने चाहिए घर में रह के अलग अलग, तो उससे प्रेम बढ़ता है। जैसे कि यदि आप तालाब में यदि आप पत्थर फेंकेंगे तो एक पत्थर फेंकने से क्या होता है, हिल जाता है, तरंगे बनती हैं। तो एक ही जगह पत्थर डालते रहेंगे तो तरंगे आते रहेंगे गोल गोल, देखा है कभी, लेकिन एक पत्थर इधर डाला, एक इधर डाला, एक इधर डाला, तो वो तरंगों का टकराव होता है। तो उसी तरह यदि घर में केंद्र बिंदु भगवान नहीं होंगे, अलग अलग केंद्र होंगे हरेक के, तो क्या होगा, टकराव होगा। लेकिन यदि एक ही केंद्र बिंदु है, यदि टकराव होगा ही नहीं फिर, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। तो इसलिए साथ में आना बहुत आवश्यक है। यदि साथ में नहीं आएंगे तो छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाएंगे। और आरती क्यों करते हैं हम, आरती इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान जो है हमारे जीवन में एक व्यक्ति के रूप में है, और जब कोई व्यक्ति कोई मेहमान घर में है या स्वामी है तो उनका हम सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनको अलग अलग चीजें अर्पित करते हैं। और भोग क्यों लगा रहे हैं, भोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो भी है हम उन्हीं का है, और हमेशा हम अपने सेवक की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। और भोग लगाते समय ये चेतना होना आवश्यक है कि भगवान स्वामी है और मैं सेवक हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान के लिए केवल मिश्री और मेरे लिए 56 भोग, भगवान के लिए भी वही है और जो बचेगा वो हम लेंगे, और वो भी कब लेंगे, दूसरों को बांटने के बाद। ये है गृहस्थ आश्रम का, ये तपस्या है। ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी आश्रम ही तपस्या है, आश्रम मतलब क्या, तपस्या, जहां पर भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रम किया जाता है वो आश्रम है, और जहां पर इंद्र तृप्ति की जाती है वो ग्रह मेदी है, वो केवल भोग किया जाता है वहां। तो तपस्या केवल ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए बताई गई है, तपस्या सबके लिए है, लेकिन हरेक के लिए अलग अलग तपस्या बताई गई है। गृहस्थ आश्रम के लिए तपस्या यह है दान करना, सबसे ज्यादा भोग बनाकर भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद को बांटना, और इस हद तक कि यदि अतिथि आ जाए उसको खिला के, यदि आपको नहीं बचे तो पहले उसको खिलाना है, तो ये तपस्या है, दूसरों को पहले देना, और भगवान को प्रमुख स्थान देना, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही, क्योंकि भगवान मेन व्यक्ति है। तो इसलिए इसके साथ साथ हमें क्या करना है, प्रचार भी करना है। क्यों, क्योंकि प्रचार करना ही सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। यदि कोई गरीब बच्चा, नहीं गरीब नहीं, कोई धनी व्यक्ति का बच्चा कहीं रह गया है रास्ते में, तो आप कई कार्य कर सकते हैं, तो कुछ भी ना करें, दूसरा आप उसको कुछ दवाई दें, कपड़े दें, कुछ खाने के लिए दें, तीसरा है कि आप पहचाने कि वो व्यक्ति जो है वो बच्चा बहुत धनी व्यक्ति का है, और उसको वापस पहुंचा दें उसके धनी माता पिता के पास। तो ये सबसे बड़ा कार्य है। तो हम सबके माता पिता गरीब हैं या धनी हैं, बहुत धनी हैं, जिनकी सेवा में हजारों लाखों लक्ष्मियां हैं। तो यदि हम उन बिछड़े हुए जीवों को फिर से भगवान के पास पहुंचा देते हैं, उनको फिर से भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो हमारा जीवन सफल है और उनका भी सफल है, भगवान की बड़ी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें साथ में आके सेवा करना है। साथ में आके यदि कृष्ण को हम बीच में लाएंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। जब लोगों में प्रेम होता है तो जगह अपने आप हो जाती है। आप बंबई में देखे होंगे कई बार लोकल ट्रेन में 3 की सीट होती है ना, जाना पहचाना व्यक्ति आया तो 4th की सीट आराम से बन जाती है, और यदि जाना पहचाना व्यक्ति नहीं है तो कितने झगड़े होते हैं, बोले बाहर जाएं क्या, वो चिल्लाता है फिर, है ना, अलग अलग झगड़े होते हैं। तो प्रेम होता है तभी हम साथ में रह सकते हैं, और साथ में रहेंगे तो ही प्रेम बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो अभी जो है ये समझना आवश्यक है कि नियमित रूप से हमें क्या करना है, क्यों मंदिर आना है, मंदिर आने से क्या होगा। घर में भी हम नाम जप कर सकते हैं, अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं, नियमित रूप से मंदिर आने में क्या लाभ है, भक्तों का संग, साधुओं का संग मिलता है, दूसरे भक्तों का संग मिलता है, सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है दूसरे भक्तों को देखकर, और साधना करनी है। साधना मतलब भक्तों का संग, शास्त्रों का पाठ, भगवान के नाम का जप और केवल प्रसाद। तो साधना मतलब क्या है, साधना हमारी क्या है, साधना मतलब नाम जप, चेतो दर्पण मार्जनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो चेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो हमारा जो मन है वो बहुत सारे कलमोशों से ढका हुआ है, जैसे कि दर्पण पर धूल जम जाती है, तो जब दर्पण पर धूल जम जाती है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उस धूल को साफ करते हैं तभी हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। उसी प्रकार हमारे मन पर, हमारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की धूल जमी है, और उसको यदि उठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। तो नाम जप के लिए सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में से यदि हम नाम जप करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए नाम जप जो करना है सुबह सुबह उठ के करना बहुत आवश्यक है, और यदि सुबह सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो करना तो है ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन क्योंकि यहां पर सब भक्त हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि सुबह उठ के करेंगे तो बहुत उसका लाभ मिलेगा। और क्या करना है, शास्त्रों का पठन करना है, क्योंकि शास्त्रों का पठन मतलब फाउंडेशन, ये नींव है हमारी, नहीं तो हमारी भक्ति जो भावुक हो जाएगी, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी अच्छे से करेंगे कभी अच्छे से नहीं करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, हम फिक्स नहीं होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आके कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हमको पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है, हर चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, और उसकी वजह से हम दूसरे को भी बता सकते हैं फिर। और फिर ये जो भक्तों के संग की बात बताई गई है, ये जैसे मंदिर में आपको बताया आना है, मंदिर जो है एक अस्पताल के समान है, और अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वहां की मशीन, वहां की बिल्डिंग, क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है अस्पताल में, डॉक्टर। आप बोलेंगे बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल है, 600 बेड हैं, एकदम आधुनिक मशीनें मंगवाई हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे जो है ना वो जो एकदम खराब कॉलेज जिसमें जो फेल हो गए वो उनको सबको भर्ती किया है, तो जाएंगे क्या उधर, कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे जो मंदिर है, मंदिर में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है, भक्त हैं, गुरु हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं। तो वो जो संग है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि संग नहीं लेंगे तो भौतिक जगत का संग हमको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। भौतिक जगत में जाना मतलब कबड्डी के समान, है ना, कबड्डी खेल सुना है, देखा है, कभी खेला है, कि दूसरे के पाले में जाना है आपको, दूसरे के पाले में जाने से पहले अपने को शक्तिशाली बनाना होता है, और थोड़ा भी कमजोर पड़ गए तो पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए पहले अपने आप की बैटरी चार्ज करनी है, रोज मंदिर आके भक्तों का संग करके नाम जप करके, और यदि हम विरोधी पार्टी में जाएंगे भी तो क्या होगा, फिर पकड़े नहीं जाएंगे, भाग के आ जाएंगे वापस तुरंत, नहीं तो क्या लगेगा, अपने जैसे लगेंगे सब, उधर लगे ये भी मेरे जैसे ही हैं, क्या प्रॉब्लम है, साथ में रहते हैं, साथ में इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते और नाम जप अच्छे से ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, और जो बहुत ही एडवांस डिवोटी उनका संग नहीं करते, तो जो नॉर्मल इंद्र तृप्ति की चीजें हैं वो भी अच्छी लगने लगती हैं, मतलब क्या थोड़ा करने में क्या बुराई है, सभी लोग कर रहे हैं, तो पागल हैं क्या वो लोग, इतने भी बड़े पागल नहीं है, अच्छे से जी रहे हैं, तो कर रहा हूं ना पूजा पाठ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं हम छोटी छोटी चीजों में। लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पूरी चीज क्या होता है, एकदम चेतना एकदम शार्प रहती है, कभी भी आप सतर्क रहेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं इधर उधर। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक है। और डाइट तो प्रसाद तो आपको बताया है, तो इस युग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन हमें करना है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने क्या किया, नाम संकीर्तन किसके साथ किया था, झारखंड में किया था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महाप्रभु ने तो शेर चीते और हिरणों को भी नचा दिया, साथ में सांप भी नाचने लगे, लेकिन कम से कम हम जो मानव हैं, हम कम से कम दूसरों मानवों को तो नचाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन दूसरों को हम तभी नचा सकते हैं जब हम स्वयं पहले हरि नाम में नाचें, उसमें ओतप्रोत हो जाएं। तो ये जो कृष्ण भगवान है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वही प्रभुपाद जी हमें संदेश दे रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी के बारे में है, इधर सबको पता ही है कि शुरू में उन्होंने रथ यात्रा किया, फिर बाद में वो भक्ति सिद्धांत सोसाइटी से मिले, फिर जलदूत पर बैठ के कहाँ गए, अमेरिका गए, प्रचार किया, प्रचार करने के बाद अलग अलग लोगों को भक्त बनाया, फिर वो भारत में लेके आए, मॉस्को गए, सब जगह जाके उन्होंने प्रचार किया है। तो अभी यदि हमें उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना है तो ना कि हमें खुद को अच्छे से अभ्यास करना है, बल्कि साथ साथ क्या करना है, औरों को भी बताना है। लेकिन औरों को हम तभी बता सकते हैं जब हमारी श्रद्धा अटूट हो, हमें भी आनंद आ रहा हो, हम बोलेंगे नाम जप कर रहा हूं, बोले आपको आनंद आता है क्या, बोले नहीं मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको आएगा, आप करो। आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, बोले मुझे मालूम नहीं, आप पढ़ो, बोले आपने भगवद गीता पढ़ी है, बोले मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप पढ़ो ना, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं इसमें, बोले एक तो अच्छी चीज बताओ इसमें से, बोले वो आप पढ़ो ना, आपको दे रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, साथ में आके सब कुछ करना है, और फिर हम सबकी भलाई, और अब सबसे पहले अपनी भलाई कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी और कोई प्रश्न है? हाँ, वो मैंने बताया, वो शुरू के दिन में प्रभु जी पूछ रहे हैं कि एक कहानी बताई है, पेपर में नोट्स में है, कि खीरा चोर और हीरा चोर। तो वो बहुत सिंपल है, वो ऐसा है कि प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आप खीरा चुराओ या हीरा चोर, चोर तो चोर ही है। हाँ? तो उसमें कहानी आती है सिकंदर की और उसकी, एक दूसरे चोर की, कि एक बार सिकंदर ने एक छोटे चोर को पकड़ा और उसको पकड़ के लाया गया, तो छोटा चोर बोलता है कि आप भी तो चोर हो, तो सिकंदर बोलता अरे क्या बोल रहा है, तो बोलता है हाँ मैं छोटे छोटे घर में चोरी कर रहा हूं, आप बड़े बड़े घर में जाकर चोरी कर रहा हूं। तो ऐसा है, तो उसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इंद्र तृप्ति है वो कोई छोटे स्तर पर करता है, कोई बड़े स्तर पर करता है, लेकिन हमें इंद्र तृप्ति से बाहर निकलना है। आप समझ रहे हैं, गहना कर्मणो गति, उसका कोई ऐसा नियम नहीं है, क्या किया है उसने कुछ मालूम नहीं है, कोई लिखा नहीं है कि बीमारी के लिए ये कर्म है, बीमारी के लिए वो कर्म है, ये केवल एक कथा है, ऐसे एक कथा से आप किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते, हजारों लाखों करोड़ों कर्म किए हैं उसने, कौन से कर्म का फल अभी आ रहा है पिछले जन्मों का आप कैसे बता सकते हैं, वो है उपाय, वो फिर कर्मकांड में आ जाता है, हम उसके कर्म में नहीं पड़ते। एक भक्त जो है बीमारी को कर्म करने का, कम करने का प्रयास करता है, जो भी दवाई वगैरह लेने का या जो भी करने का, लेकिन वो ये पूजा पाठ नहीं करता उसके लिए, क्योंकि उसको वो भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है भक्त तो, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करता है यदि बीमारी को दूर किया जा सके थोड़ा बहुत, क्योंकि शरीर को भी स्वस्थ रखना है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो फिर कर्मकांड नहीं करता है कि यज्ञ करना, तप करना, दान करना, ऐसे कुछ विधि विधान है कि जिसमें वो आपको बोलेंगे ये मोती पहनो, ये आप ये दान कर दो, वो फिर आपका भगवान में श्रद्धा नहीं है उतना। बच्चे बीमार रहते हैं तो इलाज कराइए उनका, उनको नाम जप कराइए। देखिए बात समझने की ऐसी है कि इस्कॉन संस्था जो है वो लोगों की भौतिक चीजों को समाधान देने के लिए नहीं है, ये बात पहले आप कन्विंस हो जाओ फिर दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। इस्कॉन संस्था लोगों की बीमारी, लोगों का धन, वो के लिए नहीं बनाई गई, उसके लिए बहुत संस्थाएं हैं। ये संस्था भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान देने के लिए है। तो आप उसको बोलो कि आपका बच्चा भी बीमार है, यदि आप उसको हरिनाम दोगे और भगवतीता का ज्ञान दोगे तो अगले जन्म में वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा है? और अभी जो बीमारी है उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, और यदि और कुछ करना है तो जो करना है करो, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे का कैसे है? कृष्ण जो है अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, फिर बलराम से विस्तार होता है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रद्युम्न, बस वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर वो जो संकर्षण है उनसे नारायण आते हैं, फिर उनसे दूरा एक विस्तार होता है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का, और फिर उनसे महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु के शरीर से रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में वो महाविष्णु एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, वो गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर से स्वेद निकलता है, उससे वो जो ब्रह्मांड है वो पूरा जल से भर जाता है, उस पर वो गर्भोदक्ष विष्णु विश्राम करते हैं, और वही गर्भोदक्ष विष्णु फिर विस्तार करते हैं चिरोदक्ष विष्णु के रूप में हर कण कण में, और गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से क्या निकलता है? कमल, उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके, और फिर ब्रह्मा जी का भी जीवन होता है 100 साल का, एक दिन उनका 12 घंटा जो होता है उसमें क्या होता है 1000 दिव्य युग होते हैं, और एक दिव्य युग होता है सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग, ये एक दिव्य युग है, और एक कलयुग होता है 4,32,000 का, उसका दुगना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता और सतयुग उसका 4 गुना, ये मिला के हो गया 43 लाख साल। तो 43 लाख साल हो गए एक दिव्य युग, और 1000 दिव्य युग ऐसे मिलते हैं ब्रह्मा के 12 घंटे, तो इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और वो ब्रह्मा जी भी भगवान की नजरों में एक बुलबुले के समान है, तो हम कौन है फिर सोच लो, फिर हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ बोलिए। मुझे मालूम नहीं, पूछ के बताना पड़ेगा। हैं? ईश्वर की उत्पत्ति, अरे ये तो पूरा रामायण खत्म हो गई, और ईश्वर की परिभाषा क्या है पहले ये बताइए। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, जो सब कारणों के कारण है। तो यदि वो सब कारणों के कारण है तो उनका कारण क्या हो सकता है? हाँ? अच्छा शिवजी की आप पूछ रहे हैं, सॉरी सॉरी, मैं सोचा आप बोलेंगे ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवजी वो जो जब एक्सपेंशन होता है ना, जब महाविष्णु आते हैं तो सदाशिव भी आते हैं साथ साथ, और उन सदाशिव से अलग अलग शिवा का विस्तार होता है, जो 11 रुद्र होते हैं तो वो भी कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन वो जब पहले बलराम आए, फिर सुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आए, फिर नारायण आए, फिर उसके समय ही सदाशिव ओरिजिनल शिव आते हैं जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, और उन ओरिजिनल शिव से ये भौतिक जगत के जो शिव हैं उनका अलग अलग विस्तार होता है। ठीक है, उनका धाम अलग है, महेश धाम, वो दुर्गा धाम से ऊपर है, देवी धाम से ऊपर है, फिर वहां से वो विस्तार होता है उनका। हाँ हाँ जी, कोई पूछ क्या है? वो होमवर्क है आपका, मैं नहीं बताऊंगा, वो पता करिए। अच्छा एक चीज ये पूछ रहे थे प्रेम किशोर को, आपको एग्जाम देना है या नहीं? एग्जाम देने की इच्छा है क्या किसी को? परीक्षा देना है? ठीक है, तो देखते हैं यदि पॉसिबल है तो, होगा तो बताएंगे, नहीं तो आपको तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे दिया उन लोगों ने तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आए और मुझे सेवा का मौका दिया आपने। तो जो भी राधा गोपीनाथ पू ने किया है केवल उसको ही हिंदी में बताया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो जो भी धन्यवाद या कुछ आप देना चाहते हैं राधा गोपीनाथ पू को दीजिए, सब उनका ही है, उनका ही पीपीटी है, उनका ही नोट्स हैं, केवल ट्रांसलेट किया है हमने, वो भी मैंने नहीं किया है, ऑलरेडी वंशी बिहारी पू और शिक्षाष्टक पू ने किया है। तो मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे सेवा का अवसर मिला। तो जो भी आपको लाभ मिला है उसको आप संभाल के रखिए और दूसरे को बांटिए, और जो भी छोटी मोटी त्रुटियां रह गई हैं उसको क्षमा कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, थैंक यू, गौर भक्त वृंद की जय।